पेज नंबर 219 अपभ्रंश और हिंदी का साहित्यिक संबंध। अपभ्रंश और हिंदी साहित्य के इतिहासकार। अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का क्या संबंध है? इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदी साहित्य के प्रायः सभी इतिहासकारों ने आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य को भी रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास जनवरी 1929 नाम से जो विस्तृत निबंध लिखा उसमें किसी कारण से अपभ्रंश साहित्य का समावेश नहीं हो सका था। लेकिन उसी साल उस भूमिका को स्वतंत्र पुस्तक का रूप देते समय शुक्ल जी को वह कमी महसूस हुई। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास के आदि काल में अपभ्रंश साहित्य को स्थान देते हुए उन्होंने कहा कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और शांगधर कृत हम्मीर रासो। उद्धरण चिन्ह। इसी परिपाटी का पालन हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में करते हुए डॉक्टर शून्य रामकुमार वर्मा ने भी कहा कि अर्धमागधि और नागर अपभ्रंश से निकलने वाली सिद्ध और जैन कवियों की भाषा हिंदी के प्रारंभिक रूप की छाप लिए हुए हैं। इस प्रकार इसे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत स्थान मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस कार्य का समर्थन करते हुए डॉक्टर शून्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास में कहते हैं कि यदि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी का ही मूल रूप समझा है तो ठीक ही किया है, लेकिन हिंदी साहित्य के आदि काल में अपभ्रंश को स्थान देते हुए भी इन सभी इतिहासकारों के अपभ्रंश विषयक दृष्टिकोण में अंतर है। शुक्ल जी ने जब अपभ्रंश की रचनाओं को भाषा काव्य समझकर हिंदी साहित्य में अपना लिया तो उस समय तक अपभ्रंश का विशाल साहित्य प्रकाश में नहीं आया था। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदु, रामसिंह आदि की कृतियां अभी सामने आने को थीं। शुक्ल जी इन ग्रंथों को देने का अवसर पाते तो शायद अपभ्रंश नाम से ख्यात इन रचनाओं को एक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम संस्करण का वक्तव्य दो आलोचनात्मक इतिहास प्री 068 द्वितीय संस्करण 1948 पेज नंबर 220 भाषा काव्य कहकर हिंदी में समेट लेते। शुक्ल जी ने कुमारपाल चरित, हम्मीर रासो आदि ग्रंथों को भाषा की दृष्टि से ही हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपभ्रंश और हिंदी में और कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता था। डॉक्टर शून्य वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में जिस अपभ्रंश साहित्य को स्थान दिया है वह अब तक का लगभग संपूर्ण विज्ञापित साहित्य है। उसमें स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदु आदि जैन तथा सरहपा, कान्हपा आदि सिद्ध और अब्दुल रहमान जैसे इत्र मत वाले सभी अपभ्रंश कवियों का समावेश किया गया है। डॉक्टर शून्य वर्मा ने भी भाषा की दृष्टि से ही इस अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के अंतर्गत लिया है। उनके अनुसार इन रचनाओं की भाषा हिंदी के प्रारंभिक रूप की छाप लिए है, इसीलिए वह हिंदी साहित्य में लिए जाने की अधिकारी है। एकदम हिंदी न होने के कारण ही उन्होंने इन रचनाओं को संधिकाल के अंतर्गत रखा, लेकिन डॉक्टर शून्य द्विवेदी ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना है। उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का मूल रूप समझा है। अपभ्रंश और हिंदी का संबंध उनकी दृष्टि में केवल भाषा का ही नहीं है बल्कि साहित्यिक परंपरा का है। हिंदी साहित्य में अपभ्रंश की प्रायः पूरी परंपरा ज्यों की त्यों सुरक्षित है। शायद ही किसी प्रांतीय साहित्य में ये सारी की सारी विशेषताएं इतनी मात्रा में और इस रूप में सुरक्षित हों। ये सब देखकर यदि हिंदी को अपभ्रंश साहित्य से अभिन्न समझा जाता है तो इसे बहुत अनुचित नहीं कहा जा सकता। इन ऊपरी साहित्य रूपों को छोड़ भी दिया जाए, इस साहित्य की प्राण धारा निरवच्छिन्न रूप से परवर्ती हिंदी साहित्य में प्रवाहित होती रही है। 2. अपभ्रंश और हिंदी का ऐतिहासिक संबंध। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग मानना एक बात है और मूल रूप मानना बिल्कुल दूसरी बात। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का मूल रूप या मूल स्रोत मानने का अर्थ यह है कि अपभ्रंश और हिंदी का संबंध ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक संबंध को थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों ने हिंदी साहित्य पर अपभ्रंश का प्रभाव दिखलाया है, लेकिन प्रभाव और ऐतिहासिक संबंध एक ही चीज नहीं है। हिंदी साहित्य पर संस्कृत के प्रभाव की बात तो समझ में आती है, लेकिन जिस साहित्य का अपभ्रंश के गर्भ से ही क्रमशः उद्भव और विकास हुआ है, उसे अपभ्रंश से प्रभावित मात्र कहना अवैज्ञानिक है। इसलिए अपभ्रंश और हिंदी के संबंध की मौलिक समस्या यह नहीं है कि हिंदी के कुछ काव्य रूपों काव्य रूढ़ियों उपमाओं और छंदों पर अपभ्रंश का प्रभाव दिखा दिया जाए। यह एक हिंदी साहित्य प्री 1752 2. हिंदी साहित्य प्री 15 पेज नंबर 221। सब तो ऊपरी बातें हैं। अपभ्रंश से हिंदी का संबंध इससे कहीं अधिक आंतरिक और गहरा है। संभव है कि विश्लेषण करने पर इस तरह फिर ऊपरी समानताएं इन दोनों साहित्यों के बीच उतनी न मिलें, लेकिन इसी से दोनों के संबंधों का निर्णय नहीं हो जाता। मुख्य बात है साहित्यिक चेतना का तारतम्य और भावधारा का नैरंतर्य, जिसे डॉक्टर शून्य द्विवेदी ने प्राणधारा कहा है। यदि इन दोनों साहित्यिक अवस्थाओं के बीच मौलिक प्राणधारा के पौर्वोपर्य का कुछ भी निर्णय हो जाता है तो ऐतिहासिक संबंध की पुष्टि होती है। इसलिए अपभ्रंश और हिंदी साहित्य के संबंध की मौलिक समस्या यह है कि अपभ्रंश के गर्भ से साहित्य का उद्भव किस प्रकार हुआ और अपभ्रंश से उत्पन्न होने के बाद विकास क्रम में हिंदी साहित्य किस हद तक अपभ्रंश से अभिन्न तथा किस हद तक उससे भिन्न तथा स्वतंत्र हो गया। हिंदी साहित्य का आदिकाल और अपभ्रंश। अपभ्रंश की वह कौन सी प्राण धारा थी जिसका विकास हिंदी में हुआ, इसका निर्णय इस बात पर निर्भर है कि हिंदी के आदिकाल की मुख्य प्रवृत्ति क्या है। इस विषय में आमतौर से लोगों में ये धारणा प्रचलित है, हिंदी का आरंभ वीरगाथाओं से हुआ है। इस धारणा के सूत्रपात का श्रेय मुख्यतः आचार्य शुक्ल के इतिहास को है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का सामान्य परिचय देते हुए लिखा है कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म रीति श्रृंगार वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं। राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार दीप्ति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। ये प्रबंध परंपरा रासो नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। उद्धरण चिन्ह आगे इस कथन की पुष्टि ऐतिहासिक परिस्थितियों के द्वारा करते हुए शुक्ल जी ने कहा कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और बातें पीछे पड़ गई थीं। 2. यदि साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से इस कथन की पुष्टि करना चाहें तो कह सकते हैं कि चारण कवियों की वीरगाथाएं परवर्ती अपभ्रंश की परंपरा के अनुसार ही थीं। इस तरह आसानी से ये कहा जा सकता है वीरगाथा ही वह प्रांधारा है जिसका विकास अपभ्रंश से हिंदी में हुआ। एक हिंदी साथी का इतिहास प्री शून्य 3-4-5वां संस्करण 1949 ई 0। दो वही प्री शून्य 30 पेज नंबर 222। ऊपर से देखने पर इस कथन में संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रांधारा का प्रश्न आदिकाल तक ही नहीं समाप्त हो जाता है। यदि वीरगाथा ही अपभ्रंश और हिंदी आदिकाल की प्रांधारा थी तो आगे उसका विकास भी होना चाहिए, लेकिन इतिहास से उस प्रांधारा के विकास का समर्थन नहीं होता। तथाकथित वीरगाथाओं के बाद हिंदी में तुरंत संत और भक्ति काव्य का अभ्युदय हो जाता है और विकास की इन दोनों भावधाराओं में इतना अधिक अंतर है कि विकास की कोई एक सूत्रता ढूंढ निकालना कठिन है। फिर भी जब बुद्धि है तो संगति भी बैठानी ही है। फलत शुक्ल जी ने युक्ति दी कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुण की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। उद्धरण चिन्ह। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी साहित्य की आदिकालीन वीरता की भावना वाली प्रांधारा प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण समाप्त हो गई और उसके बाद हिंदी साहित्य में उदासी छा गई। मतलब ये कि संत भक्ति साहित्य आरंभिक वीरगाथाओं की अपेक्षा कम प्राणवान है। यह सही है कि अपनी युक्तियों से शुक्ल जी ने एकदम यही निष्कर्ष नहीं निकाला है, लेकिन उनकी युक्ति की तर्कसंगत परिणति यही हो सकती है। लेकिन शुक्ल जी ने भक्ति काव्य का जो मूल्यांकन किया है उससे स्पष्ट है कि वे भक्ति काव्य को वीरगाथाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ मानते थे। यही नहीं, भक्ति काव्य को उन्होंने हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। वीरगाथाओं के मूल्यांकन के विषय में मतभेद हो सकता है, लेकिन भक्ति काव्य को एक स्वर से साधारण जन और विद्वान सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उसे भारतीय समाज की आत्मा शक्ति प्राणधारा आदि सब कुछ अनुभव करते हैं। ऐसी दशा में इस विषय पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि हिंदी के भक्ति काव्य की मूल चेतना का स्वरूप आदिकाल में क्या था और उससे भी पहले अपभ्रंश में उसके बीच किस दशा में मिलते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत अंतर्विरोध। अब प्रायः सभी लोग यह मानने लग गए हैं कि भक्ति काव्य वीरगाथाओं की हताश प्रतिक्रिया नहीं है। शुक्ल जी की यह युक्ति बहुत पहले ही इतिहासकारों को खटक गई थी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले आदमी हैं जिन्होंने शुक्ल जी की उस स्थापना का प्रतिवाद किया। दो, यदि भक्ति काव्य वीरगाथाओं की हताश प्रतिक्रिया न था तो उसके बीज आदिकाल में अवश्य मिलने चाहिए, जो विद्वान एक हिंदी साहित्य का इतिहास प्री शून्य 6-0-2। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका प्री शून्य 2 पेज नंबर 223। हर चीज को बाहरी प्रभाव के रूप में देखने के अभ्यस्त होते हैं वे, तो भक्ति द्राविड़ उपजी जैसी पंक्तियों के सहारे भक्ति काव्य को सहसा बाहर से आई हुई चीज कहकर निश्चित हो सकते हैं। लेकिन जिनके मन में किसी जातीय चेतना को समझने की थोड़ी सी भी शक्ति है, वे उस प्रभाव को ग्रहण करने योग्य परिस्थितियों की खोज हिंदी जाति के जीवन में ही करते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीरगाथाओं के साथ साथ भक्ति के भी मूल तत्व रहे होंगे। लेकिन ये संभावना कोरा अनुमान नहीं है। वीरगाथाओं की प्रामाणिकता के विषय में तो संदेह भी किया जाता है, लेकिन आदिकाल में जो सिद्धों और नाथों का काव्य मिलता है उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रायः सभी विद्वान काफी संतुष्ट हैं। इस विषय में स्वयं शुक्ल जी की भी यही राय थी कि असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है, और प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के, जो पुराने काव्य जैसे बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। फिर भी आश्चर्य है कि वे उसी संदिग्ध सामग्री को लेकर विचार करते हैं, उसके आधार पर आदिकाल की मुख्य प्रवृत्ति का निर्णय करते हैं और इस तरह संतोष करते, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कारण स्पष्ट है, शुक्ल जी को सिद्धों और नाथों के काव्य की साहित्यिकता पर घोर आपत्ति थी। अपनी वह आपत्ति उन्होंने बार बार प्रकट की। प्रथम संस्करण के वक्तव्य में उन्होंने कहा कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं जो साहित्य कोटि में नहीं आती। 12 और संशोधित तथा प्रवर्धित संस्करण से संबंध में दो बातें कहते हुए उन्होंने फिर जोर दिया कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती। 13 अपभ्रंश के जैन काव्यों के विषय में शुक्ल जी ने जो असाहित्यिकता की बात कही है, वह तो संभवतः इसलिए कि उन्हें स्वयंभू पुष्पदंत, धनपाल आदि के काव्य देखने को मिले ही नहीं, लेकिन सिद्धों और योगियों की रचनाओं के काव्यत्व पर उन्होंने जो आपत्ति उठाई उसे उनके काव्य संबंधी विशेष दृष्टिकोण का परिणाम समझना चाहिए। विचित्र स्थिति है, जो रचनाएं साहित्यिक हैं वे संदिग्ध और जो असंदिग्ध हैं वे असाहित्यिक हैं। साहित्यिकता और असंदिग्धता के इस विरोध में इतिहासकार को असंदिग्धता का ही पक्ष लेना पड़ेगा। विचार से तथ्य प्रबल होता है। किसी रचना की साहित्यिकता एक दृष्टिकोण है और इस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी रचना की असंदिग्धता एक स्थापित तथ्य है और उसे झक एक ही शून्य सा शून्य इतिहास प्री 04-29 दो ही शून्य सा शून्य इतिहास प्री 04-293 हिंदी साहित्य का आदिकाल प्री 025 बिहार राष्ट्र भाषा परिषद 1952 E0 पेज नंबर 224 मार्कर स्वीकार करना पड़ेगा। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखकर डॉक्टर शून्य द्विवेदी ने उदारतापूर्वक आग्रह किया है कि इस अंधकार युग को प्रकाशित करने योग्य जो भी मिल जाए उसे सावधानी से जिला रखना कर्तव्य है, क्योंकि वह बहुत बड़े आलोक की संभावना लेकर आई होती है। उसके पेट में केवल उस युग के रसिक हृदय की धड़कन का ही नहीं, केवल सुशिक्षित चित्त के संयत और सुचिंतित वाक पाटव का ही नहीं, बल्कि उस युग के संपूर्ण मनुष्य को उद्भासित करने की क्षमता होती है। इस काल की कोई भी रचना अवज्ञा और उपेक्षा का पात्र नहीं हो सकती। साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से या सामाजिक गति की दृष्टि से उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की संभावना होती है। उद्धरण चिन्ह मतलब ये है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीरगाथाओं के साथ धार्मिक रचनाएं भी हो रही थीं। दूसरे शब्दों में ये युग अंतर विरोधों का था। इसी को डॉक्टर शून्य द्विवेदी ने स्वतों व्याघातों का युग कहा है और शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। लेकिन अंतर विरोध अथवा स्वतों व्याघात एक चीज है और उस लोक प्रवृत्तियों को अनिर्दिष्ट कहना बिल्कुल दूसरी चीज। हिंदी साहित्य के आदिकाल में प्रवृत्तियों की अराजकता नहीं थी, उसमें बेतरतीब उगी हुई प्रवृत्तियों का जंगल नहीं था। उस विविधता में भी व्यवस्था थी और वह व्यवस्था ये थी कि दो स्पष्ट विरोधी साहित्यिक प्रवृत्तियां प्रचलित थीं। एक प्रवृत्ति वह थी जो क्रमशः क्षीयमान थी, दूसरी वह थी जो क्रमशः वर्धमान थी। पहली का संबंध राजस्तुति, सामंतों के चरित्रवर्णन, युद्धवर्णन के लिए विलास, बहुविवाह के लिए विजयोन्माद आदि से था और दूसरी का संबंध नीची समझी जाने वाली जातियों के धार्मिक असंतोष, रूढ़ि विरोध, बाह्याडंबर खंडन, जाति भेद की आलोचना, उच्चतर आचार व्यापक भगवत प्रेम, माननीय आत्मगौरव आदि से था। एक का नाम तथाकथित वीरगाथा काव्य है और दूसरी का तथाकथित योगधारा। वीरगाथाओं को क्षीयमान मनोवृत्ति का प्रतिबिंब कहने से संभव है, इनके प्रति श्रद्धालु हृदयों को कीचित ठेस पहुँचे और पूर्व स्थापित धारणाओं को धक्का लगे, लेकिन इतिहास विधाता का निर्णय निर्मम हुआ करता है। आचार्य शुक्ल जैसे रस सिद्ध सहृदय समीक्षक ने जब रासो ग्रंथों की सच्ची वीरगाथा के रूप में निरूपित किया तो इसे आचार्य की सहृदयता का अतिरिक्त आरोपण ही समझना चाहिए। उन्हें यदि इन काव्यों में मध्ययुगीन यूरोप के बैलेड काव्य की झलक दिखाई पड़ी तो इसे उनके अतीत प्रेम का प्रमाण पत्र मानना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि रासो काव्यों में कहीं कहीं सामंतों के शौर्य का सुंदर प्रदर्शन है और उनकी रसिकता का भी मार्मिक चित्रण हुआ है, परंतु उन सभी वर्णनों में पुरानी रूढ़ियों और परिपाटियों का इतना संभार है कि उनमें नवोन्मेष कम प्राचीन निपुणता का संचय अधिक दिखाई। एक हिंदी साहित्य का आदिकाल प्री-025 बिहार राष्ट्रभाषा परिषद 1952 पेज नंबर 225 पढ़ता है। ऐसी वीरगाथाओं की तत्कालीन जनता की चितवृत्ति का प्रतिफलन कैसे स्वीकार किया जाए, जबकि बख्तियार खिलजी ने केवल 200 घोड़ों से समूचे अंगबंद के राजाओं को एक लपेट में सर कर लिया और जनता के कानों पर जूं नहीं रेंगी। जाहिर है कि सामान्य जनता की भावना का उन सामंती वीरगाथाओं से कोई मतलब नहीं था। जनता की आशाएं आकांक्षाएं अपने ढंग से व्यक्त हो रही थीं। जिस समाज में दुख, दर्द, अत्याचार का स्वरूप जात पात जैसी धार्मिक और नैतिक मान्यताओं के माध्यम से प्रकट होता है, उस समाज में सामान्य जनता का असंतोष स्वभावतः धार्मिक नैतिक रूप में ही व्यक्त हो सकता है। इसलिए तत्कालीन हिंदी जनता की भावनाओं का धार्मिक प्रतीकों में व्यक्त होना स्वाभाविक है। उन भावनाओं पर लोक जीवन के अंध विश्वासों टोना टोटका आदि प्रथाओं तथा निम्न स्तर की अन्य असंस्कृत और ग्राम्य बातों की छाप हो सकती है, फिर भी उन सबके बीच से उनके दुख दर्द असंतोष तथा कभी कभी कल्पना लोक में आनंद प्राप्त करने की आकांक्षा प्रकट होती है। दरबारों में रचे गए परिमार्जित और अलंकृत काव्यों की तुलना में ये ग्रामीण काव्य अनगढ़ कच्चे और सीधे सादे लग सकते हैं, लेकिन इनमें शक्ति की संभावनाएं अधिक हैं। यदि रुचिर प्राचीन का अपना सौंदर्य है तो खुर्राट नवीन का भी अपना आकर्षण है। ऐसी अंतर्विरोधी प्रवृत्तियों में इतिहासकार साहित्य की प्राणधारा गलित प्राय किंतु सुंदर प्राचीन में नहीं बल्कि विकासोन्मुख किंतु अनगढ़ नवीन में देखता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के आदिकाल की वीर गाथाएं रचना काल और आकार प्रकार की दृष्टि से संदिग्ध होने के साथ ही निष्प्राण भी हैं। अब देखना ये है कि आदिकाल हिंदी साहित्य की इन दोनों धाराओं के बीज अपभ्रंश में किस रूप में मिलते हैं। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत अंतर्विरोध शिष्ट और ग्राम्य रूढ़ और नवीन काव्य की दो विरोधी प्रवृत्तियां अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं, लेकिन विद्वानों ने इस भेद को अपने अपने ढंग से समझा है। पम शून्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे लक्षित करते हुए कहा है कि हिंदी में दो प्रकार की भिन्न जातियों की दो चीजें अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। 1. पश्चिमी अपभ्रंश से राजस्तुति एहिकता मूलक श्रृंगारी काव्य नीतिविषयक फुटकल रचनाएं और लोक प्रचलित कथानक और 2. पूर्वी अपभ्रंश से निर्गुनिया संतों की शास्त्र निरपेक्ष उग्र विचारधारा झाड़ फटकार खड़पना सहज शून्य की साधना योग पद्धति और भक्तिमूलक रचनाएं। उद्धरण चिन्ह इनमें से उन्होंने पहली प्रवृत्ति को रूढ़िवादी तथा दूसरी को रूढ़ी विरोधी कहा है, परंतु तथ्य इस स्थापना के विपरीत जाते हैं। 1. हिंदी साहित्य की भूमिका प्री-0291 पेज नंबर 226। रूढ़ियों का विरोध करने में पश्चिमी प्रदेशों के अपभ्रंश कवि जोइंदु और रामसिंह उतने ही तत्पर हैं जितने पूर्वी प्रदेशों के सरहपा और कान्हपा। इसके अतिरिक्त पश्चिमी अपभ्रंश में रचना करने वाले मलखेड़ के स्वयंभू और पुष्पदंत जैसे प्रबंध कवियों को रूढ़ियों का पोषक किसी भी मामले में नहीं माना जा सकता। उन दोनों महाकवियों की रचनाएं धर्म विशेष के विचारों से प्रभावित अवश्य हैं, किंतु उनके चरित काव्यों में अनेक प्रकार की धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक रूढ़ियों का विरोध किया गया। राम कथा संबंधी ब्राह्मण धर्म द्वारा प्रवर्तित रूढ़ियों का साहसपूर्वक खंडन स्वयंभू और पुष्पदंत ने ही किया। राजदरबारों के अशुभ प्रभाव का उल्लेख भी उन्होंने ही किया। भौतिक सुख विलास के आसक्ति पूर्ण जीवन की असारता बतलाकर एक उच्चतर आध्यात्मिक आचरण की प्रेरणा देने में उनके काव्य अग्रणी रहे हैं। पुरुष के अत्याचारों के विरुद्ध नारी के आत्मगौरव को उस युग में स्वयंभू ने जितने साहस के साथ प्रतिष्ठित किया उतना ही साहस और किसी ने नहीं दिखाया। इस हद तक रूढ़ियों का विरोध पश्चिमी और पूर्व दोनों ही अपभ्रंश के कवियों ने किया। इसके अतिरिक्त जहां तक उस युग द्वारा निर्मित आदर्शों और मर्यादाओं के पालन का प्रश्न है उसमें भी जैन और सिद्ध दोनों कवि एक से दिखाई पड़ते हैं। कर्म फल का बंधन तोड़ने में इनमें से कोई सफल न हो सका था। यह अवश्य है कि जैन मत में कर्मों का बंधन अत्यंत उग्र माना जाता था। पूर्वजन्म के कर्मों के कारण नाना जन्म जन्मांतरों में भटकने की कथाएं किसी न किसी रूप में स्वयंभू पुष्पदंत धनपाल कनकामा आदि सभी जैन कवियों के चरित काव्यों में मिलती हैं। जोइंदु और रामसिंह जैसे स्वतंत्र चेता जैन मुनि भी कर्म सिद्धांत से मुक्त नहीं हैं। उधर सरहपा और कान्हपा जैसे उग्र सिद्ध भी संस्कार से ऊपर उठने में असमर्थ दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार मूल चेतना की दृष्टि से पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंश की रचनाओं में कोई आधारभूत अंतर नहीं दिखाई पड़ता। पंडितों के मस्तिष्क में जो ये धारणा घर कर गई है उसका आधार जातीय रेशल है। डॉक्टर शून्य द्विवेदी इस संबंध में अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के कथन को दोहराते हुए कहते हैं कि पश्चिमी प्रदेशों में बसे हुए आर्य पूर्वी प्रदेशों में बसे हुए आर्यों से भिन्न प्रकृति के हैं। भाषाशास्त्रियों ने यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है कि ये दो भिन्न भिन्न श्रेणी के लोग थे। ये भी ध्यान रखने की बात है कि पूर्वी प्रदेशों में भारतीय इतिहास के आदिकाल से रूढ़ियों और परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह करने वाले संत होते रहे हैं। वैदिक कर्मकांड के मृदु विरोधी जनक और याज्ञवल्क्य तथा उग्र विरोधी बुद्ध और महावीर आदि आचार्य इन्हीं पूर्वी प्रदेशों में उत्पन्न हुए थे। भारतीय समाज और साहित्य के विषय में इस प्रकार की क्षेत्रीय और जातीय धारणा एक हिंदी साहित्य की भूमिका फ्री 291 पेज नंबर 227 फैलाने का कार्य प्रायः याकोबी ल्यूमान गार्वे रीज डेविड्स विंटनिट्स आदि यूरोपीय पंडितों ने किया है। इस भेद को कभी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बांटा गया है, कभी आर्य और आर्येतर जातियों में, कभी ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर धर्मों में और कभी एक ही आर्य जाति के भीतर दो प्रकृति वाले आर्यों के रूप में। जहां तक क्षेत्रीय भेद का प्रश्न है, ये युक्ति समझ में नहीं आती कि रूढ़ियां एक प्रदेश में रहें और उनका विरोध दूसरे प्रदेश में पैदा हो। पश्चिमी भारत में रूढ़ियों जड़ जमाएं और पूर्वी भारत के रहने वालों को उनसे असंतोष हो, ये बहुत दूर की बात मालूम होती है। दरअसल रूढ़ियों का विरोध वहीं होता है जहां रूढ़ियां मौजूद होती हैं। प्राचीन काल से ही काशी और मगध में यदि रूढ़ी विरोधी आचार्य और पंडित होते आए हैं तो उनके साथ ही रूढ़ी पोषक विद्वानों का भी गुट रहता आया है। और यदि आर्य और आर्येतर जैसे जातीय भेद के आधार पर इस साहित्यिक भेद को खड़ा किया जाता है तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही प्रदेशों में आर्येतर जातियों के मिश्रण के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। बाहर से आने वाली जातियां सब की सब पूरब में ही जाकर नहीं बस गईं। पूर्वी भारत से कहीं अधिक जातीय मिश्रण पश्चिमी भारत में होता रहा है। शकों, हूनों के अतिरिक्त आभीर, गुर्जर आदि पश्चिमी प्रदेशों में ही सबसे पहले आकर बसे। इसलिए पश्चिमी प्रदेशों के रहने वालों में प्राचीन संस्कारों के रूढ़ी बद्ध होने की संभावना कम से कम होनी चाहिए। भारतीय समाज और साहित्य में आर्य आर्येतर जातियों के अनुसार दो विरोधी प्रवृत्तियों के संघर्ष की बात हो सकती है, लेकिन अपभ्रंश साहित्य में ये भेद किस हद तक मौजूद था ये बात अभी विचारणीय है। यह सही है कि समय पर बाहर से आने वाली जातियों के सामाजिक संस्कार के कारण भारतीय समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा है। भारतीयों ने एक ओर उनको अपनी सामाजिक व्यवस्था में समेटने की कोशिश की और दूसरी ओर उनके अनुसार अपने को थोड़ा सा बदलकर संतुलन स्थापित करने की ओर भी ध्यान दिया। सामाजिक संगठन में जातीय मिश्रण की इस प्रक्रिया के कारण साहित्यिक परंपरा में प्रायः लोकतत्वों का प्रवेश होता रहा है। इस तरह भारतीय साहित्य में समय पर नवजीवन की लहरें आती रही हैं। भारतीय साहित्य के विषय में सामान्य रूप से यह बात लागू होती है, परंतु अपभ्रंश साहित्य के विषय में विशेष रूप से इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए कितने तथ्य मिलते हैं यह आसानी से नहीं बताया जा सकता। जैन कवियों की रामकथा में जो ब्राह्मणेतर अंश मिलते हैं तथा पुराणों के चरित नायकों की जो विशिष्ट परंपरा दिखाई पड़ती है, संभव है वह ऐसे ही लोकतत्वों की उपज हो। इसी तरह श्रृंगार और शौर्य के फुटकल दोहों को भी ऐसे ही लोकजीवन के प्रवेश का परिणाम कहा जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ अनुमान ही है। जब तक इसके पेज नंबर 228 लिए ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कह सकना कठिन है। फिर भी अपभ्रंश साहित्य के भीतर रूढ़ी पोषक और नवोन्मेषाशालिनी दो प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियों का अस्तित्व निसंदिग्ध है। ये परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां दो विभिन्न प्रदेशों और भिन्न कवियों में नहीं बल्कि एक ही कवि की एक ही रचना के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। स्वयंभू की रामायण में संस्कृत और प्राकृत की बहुत सी काव्य रूढ़ियों का निर्वाह है, अलंकारों का संभार है, प्राचीन मान्यताओं का आग्रह है, फिर भी उनकी मूल चेतना नवीन है। यही बात पुष्पदंत के महापुराण के बारे में कही जा सकती है। महापुराण में कब भरे परिपाटी विहित वर्णन की भरमार है, विवाह वर्णन में, जन्मोत्सव में, राजप्रासाद की शोभा में, उद्यान क्रीड़ा में, युद्ध में, सर्वत्र प्राचीन काव्यों की सी एकरसता मिलेगी। फिर भी उनके बीच कार्यरत रहने वाले पुरुषों का व्यक्तित्व अपना है और उनके निर्माण में कवि अपने नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा करना नहीं भूलता। लोक काव्य के रूप में विख्यात संदेश रासक जैसे काव्य के विषय में भी यही बात की जा सकती है। उसमें सामोर का वर्णन करते समय जिन फल फूलों की सूची दी गई है और षड ऋतु वर्णन जिस ढंग से किया गया है वह सब एकदम परिपाटी विहित है। फिर भी संदेश रासक में विरहिणी के हृदय के जो उद्गार हैं उनकी भाव संपदा कवि की अपनी है, वह अपभ्रंश की नवीनता है। धीरे धीरे अपभ्रंश काव्य की यह नवचेतना भी रूढ़ी बनती गई। परवर्ती अपभ्रंश काव्य की इतिवृत्तात्मकता और निष्प्राणता इस रूढ़ी का प्रमाण है। तीर्थंकर वही है, शलाका पुरुष वही है, लेकिन उनके बारे में लिखे हुए काव्य निर्जीव हैं। जैन धर्म के सिद्धांत वही हैं, लेकिन परवर्ती कवियों के कथन में वह सजीवता नहीं है कि उन सिद्धांतों को जीवंत चरित्रों में ढाल सकें। जिंदत सूरी, जिनप्रभ सूरी आदि के लिखे हुए परवर्ती काव्यों में इस जड़ता का दर्शन किया जा सकता है। अपभ्रंश के इन परिपाटी विहित रूढ़ काव्यों का सिलसिला 15वीं शताब्दी तक चलता रहा, अर्थात उस समय तक भी इनकी रचना होती रही जब ब्रज अवधि आदि लोक बोलियों में नवीन साहित्यिक चेतना का अभ्युदय हो गया। रूढ़ियां तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उनके पोषक तत्व समाज से लुप्त नहीं हो जाते। परवर्ती अपभ्रंश का रूढ़ काव्य और हिंदी के चारण काव्यों में उसका निर्वाह। अपभ्रंश के इन परंपरा भुक्त काव्यों ने हिंदी के कुछ आरंभिक चरित काव्यों को भी प्रभावित किया। हिंदी के हम्मीर गयो, खुम्मान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो आदि जो विशेष प्रकार के गई काव्य है, उन्हें अपभ्रंश के परवर्ती चरित काव्यों का बढ़ा हुआ रूप समझना चाहिए। हिंदी के ये गयो चाहे जब लिखे गए हों, इनमें चाहे जब जितने भी प्रक्षेप हुए हो, तुरंत उत्तो निहित मूल प्रवृत्ति एक ही, पेज नंबर 229 है। राजाओं के धन वैभव पराक्रम और विवाह बाहुल्य आदि का बड़ा चढ़ा वर्णन एक स्वर से और एक ढंग से उन सब में मिलेगा। यह अवश्य है कि भिन्न भिन्न कवियों की शक्ति के अनुसार वह रूढ़ निर्वाह भी उत्तम मध्यम हो गया है, और उसी मात्रा में वे रचनाएं भी एक निश्चित सीमा में उत्कृष्ट नितकृष्ट हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो में परंपरा पालन के बावजूद अन्य रासो प्रबंधों की अपेक्षा काव्य सौंदर्य कहीं अधिक है। पृथ्वीराज रासो के शशिव्रता विवाह और संयोगिता स्वयंवर वाले प्रकरण किसी भी काव्य ग्रंथ के लिए गौरव के विषय हो सकते हैं। शशिव्रता की वय संधि का वर्णन बहुत कुछ परंपरा के अनुसार होते हुए भी चंद की रूप पारखी दृष्टि का प्रमाण है। राका अरु सूरज बिच उदय अस्त दुहु बेर बरस शिवृता सोभई मनो श्रृंगार सुमेर। सुमेरु पर्वत के एक ओर उगते हुए सूर्य और दूसरी ओर डूबते हुए शशि को देखकर विशाल गजराज के दोनों ओर लटकते हुए स्वर्ण घंटों की उपमा देकर तो माघ घंटा माघ हो गए। लेकिन चंद की इस प्रतिभा को क्या गौरव दिया जाए जिसने शशिव्रता के शरीर को ही श्रृंगार का सुमेरु बना दिया। इस श्रृंगार सुमेरु के एक ओर युवावस्था की राका उदित हो रही है और दूसरी ओर किशोरावस्था का सूर्य अस्त हो रहा है। उगते हुए पूर्ण चंद्र और डूबते हुए सूर्य की द्वाभा से जिस प्रकार सुमेरु रंग उठता है, उसी प्रकार श्रृंगार मूर्ति शशिव्रता भी उभरते हुए यौवन और दबते हुए कैशोर्य की द्वाभा से खिल उठी है। वय संधि में द्वाभा का सौंदर्य तो बहुत से कवियों ने देखा और दिखाया है, लेकिन किसी सुंदरी की अंग यष्टि को श्रृंगार के सुमेरु की उदात्त उपमा पृथ्वीराज रासोकार चंद की अपनी विशेषता है। प्राचीनता और नवीनता की यह द्वाभा जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो की नायिका शशिव्रता में दिखाई पड़ती है, प्रकार कविता में भी। हिंदी में अपभ्रंश की जीवंत परंपरा का विकास। लेकिन हिंदी साहित्य अपभ्रंश की रूढ़ियों का रक्षक मात्र नहीं रहा, और न कोई भी विकासोन्मुख साहित्य ऐसा हो ही सकता है। हर्ष की बात है कि अपभ्रंश के रूढ़ी साहित्य की उद्धरणी हिंदी में अधिक नहीं हुई। हिंदी मुख्यतः अपभ्रंश की जीवंत परंपरा को लेकर आगे बढ़ी। अपभ्रंश की यह जीवंत परंपरा कुछ तो संदेश रासक जैसे प्रेममुग्ध लोक गीतों में व्यक्त हुई थी, कुछ भविष्यत कहा जस चरयु नायकुमार चरयु और करकंज चरयु जैसे आख्यान काव्यों में, कुछ जैन मुनियों तथा बौद्ध सिद्धों के दोहों में, और कुछ स्वयंभू और पुष्पदंत के पौराणिक काव्यों में। हिंदी में इस प्राणधारा का विकास कहीं प्रत्यक्ष रूप से हुआ और कहीं परोक्ष रूप से। कहीं यह विकास अपभ्रंश से बहुत आगे हो गया और कहीं अपभ्रंश। एक विशेष अध्ययन के लिए देखिए डॉक्टर शून्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह द्वारा संपादित संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो फ्री 168-183 पेज नंबर 230 की सीमा से कुछ ही आगे बढ़ सका। इन सभी बातों पर सोदाहरण विचार करने के लिए इनमें से एक एक को अलग अलग लेना ठीक होगा। अपभ्रंश लोक गीत और हिंदी के श्रृंगारी मुक्तक। अपभ्रंश में लोक जीवन के स्पर्श तथा लोक तत्वों के प्रवेश से जितनी रचनाएं हुई उनमें संदेश रासक महत्वपूर्ण है। अन्य रास काव्यों की तरह इसमें किसी पुरुष का चरित्र नहीं गाया गया है, बल्कि यह छोटा सा प्रेम गीत है। इस तरह के रास काव्य हिंदी में भी लिखे गए। बीसलदेव रास 14वीं शताब्दी ईस्वी ऐसा ही रास काव्य है जिसे पृथ्वीराज रासो आदि पुराने धर्म के चरित प्रधान रासो काव्यों से भिन्न कोटि में रखना चाहिए। लगभग 125 छंदों के इस छोटे से प्रेम काव्य में बीसलदेव के परदेश जाने और उसकी रानी राजमती के वियोग तथा संदेशा भेजने और फिर बीसलदेव के वापस आने की बात ललित मुक्तकों में कही गई है। यदि इस कहानी को हटा दिया जाए तो भी इस प्रेम काव्य के मुक्तकों की एक सूत्रता में अंतर नहीं आ सकता, क्योंकि सभी छंदों के बीच कथा की अपेक्षा भाव का सूत्र है। संदेश रासक की भांति बीसलदेव रास भी मुख्यतः विरह काव्य है। अंतर इतना ही है कि बीसलदेव रास के आरंभ में विवाह के भी गीत हैं, साथ ही बीसलदेव के परदेश जाने का प्रसंग भी वर्णित है। शेष प्रसंग सामान्य रूप से लगभग एक सा है। अंतर केवल व्यौरे का है। जैसे संदेश रास में जहां षडितु वर्णन है वहां बीसलदेव रास में बारहमासा है। ऐसा मालूम होता है कि बारहमासा की प्रवृत्ति परवर्ती काल में विकसित हुई। अपभ्रंश की जिस रचना में बारहमासा मिलता है वह विनयचंद सूरीकृत नेमिनाथ चुपई 13वीं शताब्दी ईस्वी से पहले की रचना नहीं है, यदि होगी तो उसके बाद की होगी। इसके अतिरिक्त संदेश रास का षडितु वर्णन जहां ग्रीष्म ऋतु से शुरू होता है वहां बीसलदेव रास का बारहमासा कार्तिक मास से आरंभ होता है, कारण स्पष्ट है। चौमासे में कोई प्रवास नहीं करता। प्रायः लोग पावस के 4 महीने बिताकर ही कहीं बाहर निकलते हैं। बीसलदेव ने भी ऐसा ही किया, इसलिए उसकी रानी राजमती की विरह वेदना का क्वार के बाद कार्तिक से शुरू होना स्वाभाविक है। इसी तरह संदेश रास में संदेश लेकर पथिक ज्यों ही प्रस्थान करता है कि विरहिणी का प्रिय दिखाई पड़ जाता है और काव्य वहीं समाप्त हो जाता है, जबकि बीसलदेव रास में पथिक सचमुच बीसलदेव के पास पहुंच जाता है और रानी की चिट्ठी पाकर वह उड़ीसा से अपनी राजधानी अजमेर को प्रस्थान करता है, लेकिन प्रस्थान करने से पहले रानी के पास अपने आगमन की पूर्व सूचना भेजता है। बीसलदेव रास की समाप्ति राजा और रानी के आनंदपूर्ण मिलन के सुखद वर्णन के बाद होती है। एक डॉक्टर शून्य माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित और हिंदी परिषद विश्वविद्यालय प्रयाग द्वारा प्रकाशित 1953 ई-0 पेज नंबर 231। इसी तरह व्योरे की और भी कई बातें हैं जिनमें बीसलदेव रास संदेश रास से भिन्न है, फिर भी दोनों मूलतः विरह काव्य हैं और दोनों की मुख्य भावधारा एक है। इसका मतलब यह नहीं है कि बीसलदेव रास संदेश रास से प्रत्यक्षतः प्रेरित और प्रभावित हुआ है। साहित्य में ऐसे प्रभाव और प्रेरणाएं परोक्ष हुआ करती हैं। इनका मूल आधार तो लोक जीवन में ही हुआ करता है। विवाहोत्सव में बीसलदेव और राजमती भांवरे देते हैं। पहली भांवर पर कन्या के पिता आलीसर और माला नाम के दो गांव दाज में देते हैं। दूसरी भांवर पर कन्या की माता दामाद को न जाने कितना द्रव्य और कई गांव देती है। तीसरी भांवरे पर सारे निवास ने मिलकर कई अच्छे घोड़े और देश दिए। इस तरह सातों भांवरे पूरी की जाती हैं। संपूर्ण प्रसंग को पढ़ते समय इस अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों का स्मरण हो आता है। बीसलदेव रास को छोड़कर हिंदी के और किसी काव्य में इस प्रसंग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। रानी राजमती स्वभाव की कुछ खरी और जबान की जरा तेज है। राजा बीसलदेव ने एक दिन जरा अपने राजकीय अभिमान की रौ में कहा कि मेरे समान दूसरा भूपाल नहीं है। अपना पति है तो क्या, रानी से यह मिथ्या अभिमान न सहा गया। उसने राजा को तुरंत टोका और कहा कि गर्व मत कर, उड़ीसा का राजा तुमसे धनी है। जिस तरह तुम्हारे राज्य में नमक निकलता है, उसी तरह उसके घर में हीरे की खानों से हीरा निकलता है। जवाब सुनते ही राजा रूठ गया और रानी के लाख अनुनन विनय पर भी उसने उड़ीसा जाने का संकल्प कर लिया। ऐसे समय रानी राजमती के कहे हुए वचन बहुत ही मार्मिक हैं। रानी कहती हैं, हैदाव का तुरिय जीवन हाथ न फेरई सऊ सऊ बार, अर्थात मैं हेड़ा हार के उस घोड़े की तरह उपेक्षित हूँ जिस पर हेड़ा वाला सौ सौ दिनों तक हाथ नहीं फेरता। जबान की तेज तो वह है ही, राजा को भी कम चोट नहीं लगी है। वह कहता है, हे नारी, कड़वी बात मत कह, मैंने तुझे चित से विसार के छोड़ा है। जीभ नई नहीं निकलती, दवाग का डारा पेड़ तो फिर कोपले लेता भी है, लेकिन जीभ का जला फिर पल्लवित नहीं होता। जीभ नवी नहु निकली, दवका दाधा हो कुपल लेई, जीभ का दाधा न पालवई। रानी फिर भी अपनी कैंची से बाज नहीं आती। अर्थ, द्रव्य के लिए परदेश जाकर तुम कुल कानी मिटा रहे हो। अर्थ, द्रव्य तो धरती में गड़ा रह जाता है, किंतु जो इसका संचय करता है यह उसी को खाता है। पेज नंबर 232। अरथ दरब गाद्या रह जेह नई सिर जियऊ तेईस। दो सात सहेलियां राजमती को समझाती हैं कि स्वामी को फूल पगर जीउन गाहे जई, फिर भी वह जवाब देती है कि ताजी घोड़ा यदि उसा से लेता है तो दागा जाता चरता हुआ मृग भी मोहित किया जा सकता है, किंतु हे सखी, अंचल में नाथ को बांधा कैसे जा सकता है। चाम्पिया तेजिय जऊ रे उसी मृग रे चंट मोहिजर सखी अंचली बांधियऊ नाह कियु जाए। उसकी नीरसता पर झल्लाकर राजमती यहाँ तक कहती है, राव नहीं मशी भाड़ंज पीडार। मध्ययुग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं देखी। परंतु तेज है तो क्या हुआ, है तो आखिर नारी ही। प्रिय के विछोह के बाद उसका रुदन हृदय विदीर्ण कर देता है, उसे अपनी स्त्री जीवन पर रोना आता है। महेश से वह उलाहना देती है कि स्त्री का जन्म तुमने क्यों दिया, देने के लिए तो तुम्हारे पास और भी बहुतेरे जन्म थे, तुमने मुझे जंगल का जंतु क्यों नहीं बनाया, धौरी गाय भी क्यों नहीं बनाया। यदि वनखंड की काली कोयल ही बनाया होता तो आम और चंपा की डाल पर तो बैठती, अंगूर और वीजोरी के फल तो खाती। अस्त्रीय जन्म काय दिधौ महेश, अवर जन्म थारी घना रे नरेश। रानी न सिरजिय रोझडी धने न सिरजिय धौलिय गाय, बंशंट फाली कोयली हूँ बैसती अम्बा नई चंपा की डाल, भजती दाश विजोड़ी। आगे वह फिर कहती है कि यदि तुमने मुझे नारी ही बनाया तो राजा की रानी न बनाकर आंजनी जाटनी क्यों नहीं बनाया, तब मैं अपने भरतार के साथ खेत कमाती, अच्छी लोवडी लोमपटी पहनती, तुंग तुर्क के समान अपना गात स्वामी के गात से भिड़ाती, स्वामी को सामने से लेती और हंस हंस कर प्रिय की बात पूछती। आंजनी कायन सिरजिया करतार घित कमावती, स्यू भरतार पहिरन आछी लोवडी। पेज नंबर 233। तुंग तुरिय जिम भीड़ती गात साइन्य लेती, सामूही हंसी हंसी बूझती प्रिय की बात। कितनी बड़ी विवशता, किसी राजा की रानी होना कितना बड़ा अभिशाप है। मुक्त जीवन की कितनी बड़ी लालसा राजमती के इस कथन में निहित है। मध्ययुग की किसी भी रानी में ऐसी उन्मुक्त आकांक्षा नहीं दिखाई पड़ती। इस तरह विसूरते हुए जो 12 महीने बीत जाते हैं तो राजमती एक पंडित को बुलाती है और प्रिय के पास चिट्ठी लेकर जाने की प्रार्थना करती है। सहेलियां हट करती हैं कि हे सखी, तुमने जो लिखा है हमें भी सुना। राजमती एक एक करके सारी बातें पढ़ सुनाती हैं। चिट्ठी में लिखते लिखते अंत में वह लिखती है कि हे राजा, तुम तुम ज्ञान की बातें जानते हो। तुम्हें तो यह मालूम ही है कि हमें दो काया और एक प्राण मिले हैं। उस दूसरी काया को तुम दूर से क्यों छोड़ रहे हो? मैं कुलीन बेटी हूँ और शील की जंजीर में बंधी हूँ। अपने जोबन को मैं चोर की तरह छिपा कर रख रही हूँ। इसका पाप पग पग पर तुम्हें लग रहा है। जानियो हो राजा थाकउ जान दुहू रे काया मिलऊ एक परांसा क्यों दूर थी मेलियई कुल को रे बेटिय सील जंजीर जोबन राशु मई चोर जीउन पगी पगी तो नहीं पहुँच रे पाप। और चिट्ठी बांच लेने के बाद पंडित से कुछ जबानी कहने को भी कहती है। एक सरा धरी आविज्यो थारी बाट बुहारू सिरह का केसी जोबन भरी जल उल्ट्यो थाग न पावूं सुनहू नरेस। प्रिय की बाट को अपने सिर के केशों से बुहारने में कितनी विह्वलता है और लोक गीत में अपने पति को जो नंद का भाई कहकर पुकारने की प्रथा है भी राजमती के मुख से सुनिए। तू तऊ उवैगौ रे आविज्यो नन का बीर। संदेश देने के साथ ही राजमती पंडित को यात्रा संबंधी बहुत सी हिदायतें भी देती है। लेकिन पंडित तो फिर पंडित ठहरे, किया उन्होंने अपने मन ही का। रानी की सारी सीखें उन्हें भूल गईं। सलाह दी गई थी बड़े डग जाने की और चले पंडित छोटे डग। इस तरह वे 7 महीने में उड़ीसा पहुँचे। 7 महीने में तो क्या पेज नंबर 234 पहुँचे होंगे, लेकिन व्याकुल रानी के लेखे वह 7 ही महीना था। लोक कथाओं के संदेशवाहक भी ऐसी ही देर कर जाते हैं। खैर, राजा को घर की सुधि आती है और वह भी घर पहुँचने से पहले पत्र देकर एक सिद्ध योगी को भेजता है, क्योंकि इतना जल्दी उसके सिवा और पहुँच ही कौन सकता है। प्रिया और प्रिय के संदेशवाहकों में कितना विरोध है। भावों के प्रतीक हों तो ऐसे। सो वह योगिराज राजमती के हाथ में पत्र देते हैं और पत्र देखकर रानी के हृदय से यह उद्गार निकलते हैं, जिन विन घड़िय न जीवती हिवी ताही स्यूं हुआ चीरी व्यवहार। जिनके बिना घड़ी भर भी नहीं जी पाती थी, अब उन्हीं से पत्र व्यवहार की नौबत आ गई। अंत में चिट्ठी के बाद वह चिट्ठी लिखने वाला भी मिलता है। इस मिलन में नारी को आनंद अतिरेक जनित चंचलता विह्वलता हंसी ठिठोली वगैरह देखने योग्य मुल्कई हसई आलिगन देई पली न बैसई अनई पान न लेई उभिय देई उलम्भा आंगोली तोड़ी छई मरोई छई बाहना भरोसी काय करू। और इतना दुख झेलने के बाद भी जबान की वह कैची न गई और न हुई तनिक भी भोथा। आखिर उसने फिर ताना मार ही दिया, स्वामी घी विंजियऊ नई जीमियऊ तेल। हे स्वामी, तुमने वाणिज्य तो घी का जरूर किया, किंतु जेया तेल ही। इतनी सुंदर नारी से विवाह तो किया, लेकिन उसका उपभोग करने का सौभाग्य तुम्हें न मिल सका। कोई घी जैसी चिकनी जीभ ही ऐसी काट सी कठेठी बात कह सकती है। अभिव्यक्ति की सादगी और भावों की तीव्रता में वीसलदेव रास संदेश रास से कहीं अधिक लोक जीवन के रंग में रंगा हुआ है। इससे यही प्रमाणित होता है कि हिंदी साहित्य के अभ्युदय काल में अपभ्रंश युग की अपेक्षा लोक जीवन में जागृति अधिक आ गई थी और उसके फलस्वरूप साहित्य में लोक तत्व का प्रवेश अधिक दूर तक होने लगा था। वीसलदेव रास पर लोक तत्व का प्रभाव इतना गहरा है कि इसका छंद भी एकदम लोक गीतों का है। यूं तो परिश्रम करने से इसका संबंध किसी न किसी पुराने छंद से स्थापित किया ही जा सकता है, लेकिन प्रायः इसका प्रयोग इससे पूर्ववर्ती किसी काव्य ग्रंथ में नहीं मिलता। पेज नंबर 235 ढोला मारू रा दुहा। इस तरह का एक और लोक काव्य ढोला मारू रा दुहा 15वीं शताब्दी ईस्वी है, जो संदेश रास और वीसल देव रास की तरह मूलतः विरह गीत ही है, परंतु समय समय पर उसमें दांव पेच भरी हुई कथाओं की चिप्पियां लगाकर उसे मुक्तक से आख्यानक काव्य बना देने के प्रयत्न हुए हैं। मुख्य काव्य इतना ही है कि सयानी हाने पर मारवणी अपने बचपन के पति ढोला की चर्चा सुनती है और विरह में व्याकुल हो जाती है। वह अपने पति का पता लगाने के लिए कई संदेशवाहक भेजती है, लेकिन कोई वापस लौटने नहीं पाता। सभी संदेशवाहकों को उसकी सौत मालवाणी मरवा देती है और ढोला के पास मारवणी का संदेश तक नहीं पहुंचने देती। अंत में मारवणी लोक गीत के गायक एक धाड़ी को ये जिम्मेवारी सौंपती है और धाड़ी को इस उद्देश्य में सफलता मिलती है। धाड़ी के प्रयत्न से ढोला और मारवणी दोनों में पुनर्मिलन होता है। संग्रह में संग्रहित अधिकांश गीतों की पृष्ठभूमि यही है। इसके बाद कुछ और रस पैदा करने के लिए मारवणी की मृत्यु करा दी गई और उसे किसी तरह जिला देने के बाद फिर उमरा सुमरा जैसे शत्रु की बाधा खड़ी की गई है और अंत में उस बाधा को भी दूर करके ढोला को उसकी दोनों पत्नियों को इकट्ठा मिला दिया गया है। इस तरह वर्तमान कथा प्रसंग में रुकावट दौड़ का सारस उत्पन्न करने की चेष्टा दिखाई पड़ती है, जबकि मुख्य प्रसंग ढोला के प्रति मारवाड़ी के विरह निवेदन और संदेश प्रेषण तक ही सीमित है। ढोला काव्य का यह मुख्य अंश वस्तुतः गीतात्मक ही है। इतने कथा प्रसंग का अध्याहार तो कितने मुक्तक सवैयों और घनाक्षरियों में रहा करता है। ढोला के काव्य गठन में संदेश रास और वीसलदेव रास से यह नवीनता है कि इसमें षडितुवर्णन या बारहमासा जैसी कोई चीज नहीं है। ऋतुओं में केवल पावस का वर्णन है और वह भी विस्तार से। ऐसा शायद इसलिए हुआ है कि मारू देश में सबसे मनोहर पावस ऋतु ही होती है, जैसा कि ढोला में कहा भी गया है, मारू देश सुहावना सावन सांजी बेर। ढोला के इस पावस वर्णन की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें स्थानीय रंगत सबसे अधिक है, वीसलदेव रास से भी अधिक। ढोला के पावस वर्णन में परंपरा भुक्त कुछ भी नहीं है। ढोला में प्रसंगात मारू देश का ही वर्णन में है, लेकिन यह वर्णन संदेश रास के सामोर की तरह परिपाटी विहित नहीं है। उसमें काव्य रूढ़ गिनी चुनी वस्तुओं और पेड़ों के नाम गिनाने का शौक नहीं है। यहाँ भी मारवाड़ का वास्तविक जीवन प्रतिबिंबित हो उठा है। एक सर्वश्री राम सिंह सूर्यकरण पारीक और नरोत्तमदास स्वामी द्वारा संपादित और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 1934 पेज नंबर 236। ढोला के संदेश कथन में भी विशेषता है। संदेश रास में संदेशा सर्वथा अपरिचित एक पथिक से कहा गया है। वीसलदेव रास ने अपने राज्य के ही एक पंडित को बुलाकर कहा गया है, लेकिन ढोला में क्रौच पक्षी से लेकर धाड़ियों तक से अपनी विरह वेदना कही गई है। यहाँ संदेश वाहक भी सहृदय हैं। क्रौच पक्षी से बढ़कर विरह विदग्ध और कौन होगा। दूसरी ओर गायक धाड़ी भी पथिक और पंडित की तरह मात्र श्रोता नहीं है, बल्कि संदेश को अपनी रचना शक्ति से अधिक मार्मिक बनाकर कहने वाले जीव हैं। ऐसी दशा में ढोला के संदेश कथन में मार्मिकता कहीं अधिक है। शैली की दृष्टि से ढोला लोक गीत के निकट सबसे अधिक है। एक ही पंक्ति की अनेक आवृत्तियों में प्रायः लोक गीतों की विशेषता दिखाई पड़ती है। इससे उनमें सरलता के साथ मार्मिकता भी बढ़ जाती है। उद्धरण ढोला के दोहों में विशेषत विरह निवेदन में इस प्रवृत्ति की बहुलता है। मारवणी के संदेश कथन का आरंभ इस प्रकार होता है कि एक रात घर के पीछे वाले सरोवर में रात भर कुररी पक्षियों का करुण रव होता रहा। मारवणी को नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह सखियों सहित सरोवर के पास गई और कुंजों से बोले बिना न रह सकी। मारवणी और कुंजों का सवाल जवाब थोड़ी देर तक होता रहा और अंत में किसी गंवार को शर संधान करते देख कुंजनियां उड़ गईं। पक्षी और स्त्री की इतनी मार्मिक बातचीत हिंदी में पद्मावत को छोड़कर और कहीं नहीं है। ये प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। कुंझा द्यु नई पदखड़ी थांकउ विनऊ वहेसी सायर लिंगी प्री मिलू प्री मिली पाछी देसी महे कुर्झा सरवर तना पांखा किन्हीं न देश भरिया सर देखी रहा उड़ आघिरी वहेस उत्तर दिसी उपराठिया दक्षिण सामिया कुर्झा एक संदेश सुरऊ ढोल नहीं कहिया मानस हवा तमुख चवा महे छा कुझड़िया प्रिय संदेशऊ पाठविसु लिखी दे पंखड़िया पांखे पानी थाहरण जली काजल गहलाए सयना तना संदेशड़ा मुख वचने कहबाए कुंज चाहे जो हो लेकिन है तो आखिर पंक्षी ही वे भला इतनी समझदारी से भला उत्तर कैसे दे सकती हैं लेकिन विदग्ध चित्त की गति विचित्र होती है यदि कुंजे नहीं बोल रही हैं तो यह चित्त उनकी ओर से स्वयं ही जवाब दे लेता है इस मनःस्थिति को इस बात चीत में कितनी मार्मिकता के साथ व्यक्त किया गया है पेज नंबर 237 यदि कुंजों ने अपनी पांखों पर संदेशा लिखवाने से इनकार कर दिया और यदि उन्होंने प्रियतम के पास जाने के लिए अपनी पांखें उधार न दी तो क्या हुआ धाड़ी तो है ही मारवनी उन्हीं में से एक को बुलाकर अपना संदेश कहती है इस संदेश में को लंबी चौड़ी बात नहीं बनावट नहीं स्त्रियों का संदेश दिल पर जितनी सीधी चोट करने वाला होता है वैसा ही है हर एक भाव और हर एक वाक्य जैसे रह रह कर उठती हुई एक एक लहर है इन सबका ऐसा लंबा सिलसिला है कि कभी खत्म ही होता ना दिखे धाड़ी एक संदेशरऊ प्रीतम कहिया जाए साधन बली कहला भाई भसम धंधलिसी आए धाड़ी जे प्रीतम मिलई यूं कही दाखविया पंज नहीं छड़ प्राणियऊ था दिस झल रहिया धनिया जलकर कोयला हो गई अब आकर उसकी भस्म धंधोलना और पंजे में प्राण नहीं है केवल उसकी लौ तुम्हारी ओर झुक झुक कर जल रही है ये दोनों ही चित्र कितने प्रभावशाली हैं करुणा मूर्तिमती हो गई है आखिर कौन इतना निष्ठुर होगा कि ऐसा संदेशा पाने पर घर न चला आए इसके बाद तो कभी वह उस कभी उस राज्य से कभी अपने भले मानस से संदेशा कहने को कहती साहिब से निवेदन करती है तो कभी सीधे अपने ढोला से जैसा भाव वैसा संबोधन मारवनी के मन की स्थिति का एक और चित्र है जब ढोला के आने की खबर उसे मिलती है खबर सुना नहीं कि हृदय हर्षोद्रेक से हिमगिरी जितना विशाल हो गया वह अनुभव करती है कि अब वह तन पंजे में समाएगा ही नहीं हेड़ा हेमांगिरी भयउ तन पंजरे न माए वह अपने मंदिर में इस तरह फुदकती हुई चली जैसे कोई फौवारा छूट रहा हो मारू चाली मंदिरे जानी छुटो छंछाल वह घमम घमंत घाघरे में एक घर से दूसरे घर में चलती हुई ऐसी मालूम रही है जैसे झीने बादल चंद और अपने हर्षातिरेक में देखती है कि घरे के खंभे तक नाच रहे हैं सारा घर हंस रहा है और सबसे बढ़कर तो वह खाट है जो उठकर खेल रही है सोई साजन आविया जाह की ज्योति बाट थानमा नाचई घर हंसड़ खेलन लागी खाट इस प्रकार मारवाड़ देश में लिखे हुए ये दोनों लोक काव्य चारणों की राजस्तुतियों के परिपार्श्व में सामान्य लोक जीवन की स्वस्थ और सरस भावनाओं को प्रकट करते हैं ये लोक काव्य उच्च स्वर से घोषणा करते हैं कि बड़ी से बड़ी पेज नंबर 238 विषम स्थिति में जनता गाना बंद नहीं करती और यदि राजदरबार अपने मिथ्या अभिमान वैभव और गौरव का निष्प्राण तथा आडंबरपूर्ण साहित्य कुछ स्वर्ण मुद्राओं और रजत खंडों के बल पर लिखवाते हैं तो जनसाधारण के कवि अपनी उमंग से ही अपने जीवन का रस सहज ही काव्य में उंदेला करते हैं यह आकस्मिक बात नहीं है कि संदेश रास मुल्तान में लिखा गया और वीसलदेव रास तथा ढोला काव्य भी उसके पास ही मारवाड़ देश में ये पश्चिमी भारत के जीवंत लोक जीवन के प्रमाण हैं। अपभ्रंश कथाएं और हिंदी के आख्यानक काव्य। अपभ्रंश साहित्य की प्राणधारा एहिक लोक गीतों के अतिरिक्त जिन रचनाओं में व्यक्त हुई वे प्रायः सबकी सब धार्मिकता का पुट लिए हुए हैं। लोक प्रचलित कहानियों में जगह जगह धार्मिक संकेत की छोंक देकर इस्तेमाल में लाने की प्रथा इस देश में पहले से ही मौजूद रही है। लोक गीतों में धार्मिकता का पुट तो नहीं दिया गया क्योंकि वे गाने के लिए लिखे गए और अपने राग रंग के ऐहिक क्षणों में जन साधारण भरसक धार्मिक जीवन के ऊंचे आदर्श को भूलना ही अच्छा समझते हैं। आखिर यह भी क्या जीवन है कि जब देखो तब ऊंचे ऊंचे आदर्शों की ही दुनिया में रहा जाए, एक उच्चतर आमुष्मिक भाव की ही चर्चा में रत रहे। वास्तविकता भी कोई चीज होती है, सहज जीवन का भी अपना आनंद होता है, अनावृत क्षणों का भी अपना महत्व होता है। वीसलदेव रास और ढोला के दोहे ऐसे ही अवसरों पर गाए जाने के लिए रचे गए हैं। इसका कारण शायद ये भी हो कि जिन दिनों ये रचे गए, धार्मिकता की लहर लोक जीवन में उतनी नहीं उठी थी, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ही जब उत्तर भारत में भक्ति की बाढ़ आई तो ये तमाम लोक प्रचलित गीत गोविंद राम आदि भगवत परक नामों से संबलित करके भक्तिभाव के लिए इस्तेमाल कर लिए गए। ढोला शून्य के अनेक दोहों को कबीर ने ज्यों का त्यों उठा लिया, कहीं कहीं अपनी ओर से इतना ही किया कि जहां प्रीतम था वहां गोविंद को रख दिया। जैसे ढोला शून्य के राती जू सारस कुरलिया गुंजी रहे सब ताल जिनकी जोड़ी बिछड़ी, तिनका कवन हवाल को कबीर ने इस प्रकार कर लिया, अंबर कुंजा कुरलिया गर्जी भरे सब ताल जिन पे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। लेकिन लोक गीतों की अपेक्षा कहीं अधिक परिवर्तन लोक कथाओं में किया गया है, क्योंकि उनमें परिवर्तन की गुंजाइश अधिक होती है। अपभ्रंश की भविष्यत कहा मूलतः एक लोक कथा है। इस तरह की कहानी आज भी हमारे यहाँ गांवों में कही जाती है कि एक सौदागर के दो औरतें थीं। छोटी पेज नंबर 239 को वह बहुत मानता था, बड़ी की कोई कद्र नहीं थी। कुछ दिनों बाद अपने बाप की आज्ञा से छोटी स्त्री का लड़का रोजगार के लिए परदेश चलने लगा। ये देखकर बड़ी का भी लड़का मचल उठा। माँ ने मना किया लेकिन वह न माना। आखिर उपेक्षिता के लड़के की ही तकदीर खुली और उसे काफी धन मिला, यहाँ तक कि धन के साथ ही एक कन्या भी मिली। दूसरी ओर पति की प्रिया के लड़के के हाथ कुछ न लगा। तब ईर्ष्यावश रास्ते में इस लड़के ने अपने सौतेले भाई को कुएं में झोंक दिया और उसका सब कुछ लेकर वह खुद घर चला आया। संयोग से उस लड़के की जान बच गई और वह फिर बहुत सारा धन लेकर घर पहुंचा। भेद खुलने पर एक को दंड और दूसरे को पुरस्कार दिया गया। जैसे उसका राजपाट लौटा वैसे सबका लौटे। भविष्यत कह कि कहानी यही है। कहीं यही कहानी राजा रानी और राजकुमारों के रूप में कही जाती है और कहीं सौदागर के रूप में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वह राजा हो चाहे सौदागर, है वह एक साधारण आदमी का ही प्रतिनिधि। यदि ध्यान से देखा जाए तो स्वयं इस कहानी की रचना में ही एक विशेष उद्देश्य काम कर रहा है। ये कहानी रची ही गई है इस उद्देश्य के लिए कि जो मनुष्य द्वारा तिरस्कृत होता है उसकी मदद भगवान या भाग्य करता है। लोक कथाएं प्रायः स्त्री जाति द्वारा ही रची जाती हैं, इसलिए स्वभावतः उनमें उन्हीं का दुख सुख सबसे अधिक होता है और दुख सुख में वास्तविक तो दुख ही रहता है, सुख तो केवल आकांक्षा की उपज होती है। पुरुषों द्वारा सताई हुई स्त्री जाति आखिर इसके सिवा और क्या सोच और कह सकती है। पति अपने सुख के लिए एक से अधिक विवाह कर ही लिया करते थे। ऐसी दशा में कभी तो छोटी सौत से तकलीफ मिलती थी और कभी बड़ी सौतों से सबसे छोटी रानी को, क्योंकि कभी कभी अनुभवी रानियां छोटी रानी को ही कौवा बना देती हैं। राजा के मानने से क्या होता है। वह 24 घंटे अपनी छोटी रानी की देखभाल तो नहीं कर सकता। जो हो किसी न किसी पत्नी को तकलीफ होना जरूरी है। पीड़ा तो पीड़ा है, इस अंगुली को दबाएं तो पीड़ा और उस अंगुली को दबाएं तो पीड़ा। अब पीड़ित औरत स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए उसकी पीड़ाओं को दूर करने वाला उसका बेटा होता है। स्त्री को अपने बेटे का सबसे बड़ा बल होता है। यहीं से उनकी कल्पना को पंख लगते हैं और बाकी कहानी उसी कल्पना का परिणाम होती है, जिसमें उसका लड़का सात समुन्दर पार कहीं से अचानक अपार धनराशि और साथ में एक चुनमुनी बहू भी लेकर लौटता है। माँ का हृदय आखिर ठहरा तो माँ का ही हृदय, पुत्र के इस आकस्मिक भाग्योदय पर भी उसे विपत्ति की आशंकाएं हैं, और ये वास्तविक आकांक्षाएं इतनी प्रबल हैं कि कल्पना में भी मन को नहीं छोड़ती। ये आशंकाएं उसके काल्पनिक सुख को भी अपनी छाया से मलिन कर देती हैं। फलतः पुत्र का भाग्योदय भी किसी न किसी बाधा, विघ्न अथवा संकट से पेज नंबर 240 ग्रस्त होता है। ये संकट कभी दैवी होता है और कभी मानवीय। कभी वह अपनी ही सौत के लड़के की ओर से आता है और कभी किसी अदृश्य शक्ति की ओर से। लेकिन कल्पना केवल आशंकाओं की सृष्टि के लिए नहीं की जाती, कभी कभी की भी जाती है। लेकिन ऐसी कल्पनाएं उसी मन की होती हैं जो अधिक शंकाकुल, संदेहशील और निराशावादी होता है। लेकिन यहाँ तो माँ को अपने बेटे पर अधिक विश्वास है, इसलिए उसे पूरी आशा है कि हमारा लड़का धरती चीर कर, चाहे आकाश फांद कर, कहीं न कहीं से हमारा दिन लौटाएगा। यही विश्वास ऐसी हर कहानी को सुखांत बनाता है। वे बाधाएं कुछ तो मनुष्य के अपने उद्योग से और कुछ अतिमानवीय शक्तियों की मदद से दूर हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में प्रकृति अथवा परिस्थिति की मदद से मनुष्य अपने दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। स्त्री का सौभाग्य यदि पुरुष छीनता है तो पुरुष ही उसे वापस भी करता है। अंतर इतना ही है कि पीढ़ी छीनती है तो आगे आने वाली पीढ़ी पर आशा लगी रहती है कि वह वापस लौटाएगी। पति यह पीढ़ी है तो पुत्र अगली पीढ़ी का प्रतीक है। इस तरह यदि भविष्यत कहा कि मूल लोक कथा का अच्छी तरह विश्लेषण किया जाए तो वह अपने आप में बहुत अधिक सोदेश्य है। फिर भी ऐसा मालूम होता है कि विद्वानों को इतने से संतोष नहीं हुआ। यही क्यों, उस उद्देश्य से उनके उद्देश्य का मेल नहीं बैठा। नारी का असंतोष भी कोई असंतोष है, ये भी कोई मानवीय वस्तु है। ये तो कर्मों का फल है और वह भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल। इस पर किसी का क्या वश। ये कष्ट जैसा स्त्री के साथ वैसा पुरुष के साथ, इसे भला कोई अदृष्ट शक्ति कैसे दूर कर सकती है। अदृष्ट तो अदृष्ट ही है, उसका क्या भरोसा। प्रश्नवाचक चिन्ह, उससे अधिक भरोसा तो अपने आराध्य देव का किया जा सकता है। ये आराध्य देव चाहे जिन हों या और कोई, इनका भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि इन्हें प्रसन्न करने की विधियां निश्चित हैं और मालूम है, जबकि अदृष्ट अथवा भाग्य तो अनिश्चित है। राम भरोसे है। अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ व्रत आदि काफी हैं, और जैन मत में श्रुत पंचमी एक ऐसा ही व्रत है। इस तरह जो कहानी पहले शुद्ध कल्पना जनित भाग्य पर आधारित थी, वह सिद्धांत विशेष जनित उपासना विधि पर स्थापित कर दी गई। मध्ययुग में ऐसा स्वदेशीय संशोधन अनेक लोक कथाओं के साथ किया गया है। उत्तर भारत में प्रचलित सत्यनारायण की कथा भी ऐसा ही स्वदेशीय संशोधन है। ये संशोधन कभी कभी इस हद तक किया जाता है कि मूल कथा गायब हो जाती है और केवल संशोधन ही बच रहता है। जैसे सत्यनारायण की कथा में व्रत और कथा का केवल महात्म्य ही रह गया। मूल कथा इतनी घिस गई है कि केवल सत्यनारायण नाम के रूप में शेष रह गई है। पेज नंबर 241। यही नहीं, इन लोक कथाओं में परवर्ती युग के पंडितों ने एक और प्रकार का संशोधन किया। स्त्रियों की आदिम लोक कथाओं में सारा वातावरण घरेलू और गवई स्तर का ही हुआ करता था। उनमें राजाओं और रानियों का नाम तो रहता था, लेकिन राजाओं के बड़े बड़े युद्धों के लिए कोई जगह न थी। धन वैभव के वर्णन में हीरे, जवाहरात, घोड़ा, हाथी तो रहते थे, लेकिन तोप तलवारें न थीं। मध्ययुग के पंडितों ने उन लोक कथाओं को अपने हाथ में लेते ही देखा कि इनमें राजा रानी अपने पूरे वैभव के साथ आए ही नहीं हैं। आखिर राजा भी क्या कि दो चार लड़ाइयां न करे। ऐसे सामंत युगीन प्रभाव से इस कवि का प्रभावित होना स्वाभाविक था। बिना इस संशोधन के उसी कहानी की वास्तविकता में उस समय विश्वास कौन करता। भविष्यत कहा कि दूसरे खंड में कवि ने यही संशोधन किया है। इधर विद्वानों में पुरानी पोथियों की प्रामाणिकता का पता लगाने की ऐसी आकुलता है कि वे हर कथा के मूल रूप को ही प्रामाणिक मानने का पैमाना लेकर दौड़ पड़े हैं। उन्हें जहां भी किसी कथा में कुछ जोड़ और कुछ चकतियां दिखाई पड़ती हैं, चट से वे इन सबको प्रक्षिप्त कहकर कतर फेंकते हैं। ये खोजी विद्वान केवल नींव का पता लगाने निकले हैं। इनको नींव के ऊपर चुनी हुई ईंटों की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर बेहद परेशानी होती है, लेकिन ये रचना परेशानी की चीज नहीं है। नींव ही वास्तविक नहीं है, उसके ऊपर समय समय पर जितनी ईंटें रखी गई हैं वे सब भी वास्तविक हैं। उन सब का भी ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि इतिहासकार की दिलचस्पी इन स्तरों में ही सबसे अधिक होनी चाहिए। किस युग की विचारधारा ने मूल कथा पर कौन सी चिप्पी लगाई, ये जानना कम महत्वपूर्ण नहीं है। समय समय पर जोड़ी हुई ये चिप्पियां किसी युग के साहित्य और समाज को समझने में विशेष सहायक हुआ करती हैं। भाषा जैसी अल्प परिवर्तनशील तथा काव्य रूप आदि अन्य परंपरित काव्यात्मक उपादानों की मदद से किसी रचना की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के निर्णय करने की अपेक्षा मूल कथा में समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित परिवर्तनों का विश्लेषण अधिक उपादेय हो सकता है। एक ही रामकथा को वाल्मीकि से लेकर मैथिली शरण गुप्त तक किसी प्रकार संशोधित किया गया। इसके विवेचन से वाल्मीकि से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन तक के विविध सामाजिक परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है, और फिर इन सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि पर विभिन्न साहित्यिक उत्थानों को भी समझने में मदद मिल सकती है। भविष्यत कहा में पूर्व प्रचलित लोक कथा को जिस ढंग से मोड़ा गया है, उससे धनपाल अथवा जैन धर्म के विचारों का ही पता नहीं चलता, बल्कि उस संपूर्ण युग में काम करने वाली सामान्य मनोवृत्ति का आभास मिलता है। पेज नंबर 242। धार्मिक उद्देश्य के अनुसार लोक कथाओं को मोड़ने की यह प्रवृत्ति कुछ और विकसित रूप में हिंदी के आरंभिक आख्यानों में भी दिखाई पड़ती है। इन आख्यानकों का उपयोग सूफियों ने सबसे अधिक किया। कारण स्पष्ट है। हिंदी भक्त कवियों की तरह कहानियों की अपनी कोई धार्मिक पौराणिक परंपरा न थी। सूर तुलसी तो कृष्ण और राम की पौराणिक कथा का सहारा ले सकते थे, लेकिन ईरान से आए हुए सूफी संतों के पास अपनी पौराणिक कथाओं की कोई निधि न थी। संभवतः ईरान का सूफी काव्य प्रायः मुक्तक और गीत ही है। भारत के इस्लाम धर्म में दीक्षित हिंदू इस मामले में अधिक सौभाग्यशाली थे, किंतु धार्मिक कारणों से उन्होंने हिंदी पौराणिक कथाओं को अपनी रचना का आधार नहीं बनाया। पौराणिक कथाओं को न अपनाने का एक कारण शायद ये भी रहा हो कि गांवों में रहने वाले ये भोले भाले नव दीक्षित मुसलमान घरेलू लोक कथाओं से जितना परिचित थे, उतना पौराणिक कथा से अभिज्ञ न थे। कारण जो भी हो, तथ्य यही है कि हिंदी के सूफी संतों ने लोक कथाओं को अपने आदर्शों के लिए अपनाया। लोक कथाओं को इस तरह अपनाने का उत्साह हिंदी के हिंदू भक्त कवियों में नहीं देखा गया। जायसी का पद्मावत एक ऐसा ही सूफी काव्य है जिसमें भविष्यत कहा की ही तरह लोक कथा का स्वदेशीय संशोधन किया गया है। जिस प्रकार राजकीय वैभव के लय भविष्यदत्त के भाग की कहानी में कुरु जंगल और पोइनपुर के राजाओं का युद्ध जोड़ दिया गया है, उसी प्रकार रतन सेन और पद्मावती के प्रेम कहानी में भी अलाउद्दीन का चित्तौर का आक्रमण बढ़ा दिया गया है। इससे सामान्य लोक कथा में सामंती वैभव तो जुट ही गया है, समसामयिकता की भी छाप लग गई है, लेकिन ये तो गौण बात है। मुख्य बात है पद्मावती की सामान्य प्रेम कहानी को भगवत प्रेम का रूप देना। धनपाल ने लोक कथा में जो धार्मिक रंग दिया है उसमें व्रत और आचार पालन का ही आग्रह है, लेकिन जायसी के धार्मिक रंग में साधारण आचार पालन से ऊपर उठकर ईश्वरोन्मुख प्रेम की प्रगाढ़ता है। यह वस्तु जायसी की अपनी है और जायसी के साथ जायसी के युग की है। भक्ति की यह भावना धनपाल और धनपाल के युग में न थी। ये भावना तत्कालीन जैन समाज में ही नहीं बल्कि ब्राह्मण और बौद्ध समाज में भी न थी। भक्ति की यह भावना अपभ्रंश में ही नहीं बल्कि तत्कालीन प्राकृत और संस्कृत साहित्य में भी न थी। ये भावना ब्राज, अवधी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमी, उड़िया आदि आधुनिक भारतीय साहित्यों की अपनी विशेषता है और इसका अभ्युदय कुछ आगे पीछे इन साहित्यों में 13वीं शताब्दी ईस्वी के बाद हुआ। धनपाल के युग में संभवतः व्रत और आचार का पालन ही सबसे बड़ा आदर्श था, लेकिन धीरे धीरे वह भी रूढ़ी पालन मात्र हो गया। बहुत संभव है धनपाल के समय ही उसमें बहुत कुछ जड़ता आ गई हो, लेकिन यह निश्चित है कि आगे पेज नंबर 243 चलकर उस धार्मिकता में जीवन प्रेरणादायिनी शक्ति नहीं रह गई थी। इसकी प्रतिक्रिया जोइंदु, रामसिंह आदि जैन मुनियों के द्वारा ही शुरू हो गई थी, किंतु आगे चलकर 13वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मण, बौद्ध, इस्लाम सभी भारतीय धर्मों और समाजों में अपने अपने ढंग से इस तरह की आचार प्रधान रूढ़ियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और उसकी जगह भगत प्रेम की प्रतिष्ठा हुई। इस नवीन उद्देश्य ने पद्मावत की लोक कथा को भी मोड़ दिया, परंतु इस संशोधन में भी स्पष्ट रूप से ऐहिक और आमुष्मिक तत्व अलग अलग दिखाई पड़ जाते हैं। पद्मावती को भगवान और रतनसेन को भक्त का प्रतीक तो जायसी ने बना दिया, लेकिन नागमती के गोरख धंधा पर वह धार्मिकता का रंग न चढ़ा सके। नागमती का वियोग मूल लोक कथा के अवशेष के रूप में ही रह गया और यह अवशेष भी इस तरह रहा कि उसकी सत्ता स्वतंत्र और अलग प्रतीत होती है। विशेष दृष्टिकोण के कारण जायसी ने नागमती को दुनिया का गोरख धंधा भले कह दिया हो, लेकिन उसके लौकिक रस को पद्मावती का प्रेम भी नहीं पा सका। पद्मावती के रूप में जायसी ने चाहे कितना अलौकिक प्रभाव भर दिया हो, उसके पारस रूप में उन्होंने चाहे जितनी शक्ति संचित कर दी हो, लेकिन हृदय तो उन्होंने नागमती को ही दिया और हृदय भी ऐसा दिया कि उसकी निरी लौकिकता के सामने पद्मावती के रूप की अलौकिकता भी फीकी पड़ जाती है। यही हृदय की लौकिकता तथा सौंदर्य को अलौकिकता पद्मावती काव्य की विशेषता है, जिनमें जायसी के आदर्श की अलौकिकता के साथ भावों की लौकिक संपदा भी सुरक्षित है। वास्तविकता में कल्पना और यथार्थ में आदर्श की प्रतिष्ठा का यह उत्कृष्ट उदाहरण राम और कृष्ण भक्ति काव्य कथा में भक्ति का पुट देने की यह प्रवृत्ति थोड़े से अंतर के साथ हिंदी के राम भक्ति काव्य में भी दिखाई पड़ती है। कहने को तो अपभ्रंश के जैन कवियों ने पौमचर्यु और हरिवंश पुराण लिखे, जिनमें क्रमशः राम और कृष्ण का चरित्र गाया गया है, लेकिन उनमें राम और कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं हैं। उनके यहाँ ये हो भी कैसे सकता था। हर विचारधारा का उद्गम सुदूर अतीत में ढूंढ निकालने वालों के लिए तो अवतारवाद की भावना वेद से ही चली आ रही है, लेकिन वेद से उसका आरंभ होना एक बात है और मध्ययुग में उसका अत्यधिक व्यापक हो जाना दूसरी बात है। अवतारवाद का आरंभ चाहे जितना पहले हुआ हो, लेकिन अवतार में लोकजीवन का सामान्य विश्वास जितना मध्ययुग में प्रचलित हुआ, उतना पहले कभी न था। अवतारवाद की यह व्यापकता निश्चित रूप से भक्ति आंदोलन के द्वारा मिली। संत और भक्त कवियों का ये सामान्य विश्वास था। पिंड में ब्रह्मांड को देखना, ब्रह्मरंध्र में अनहद नाद को सुनना, पद्मावती में अलौकिक सत्ता का आभास पाना, दशरथ सुत राम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करना और वसुदेव सुत कृष्ण में लीलाधाम परमात्मा को निहारना, ये सब प्रकारांतर से उसी अवतारवादी पेज नंबर 244 भावना के ही विविध पक्ष हैं। विविध धर्मों और संप्रदायों के अनुरूप भक्तियुग की एक ही भावना ने अनेक रूप धारण कर लिया था। अपभ्रंश काव्य में इस भावना के दर्शन जो नहीं होते तो उसका ये कारण नहीं है कि उसके अधिकांश कवि जैन थे। भक्ति भावना केवल हिंदू धर्म की अपनी संपत्ति नहीं है, यह एक युग विशेष की लोक व्यापी सामान्य प्रेरणा शक्ति है जो हिंदू धर्म के साथ ही इस्लाम में भी दिखलाई पड़ती है। धर्म इसका क्षेत्र है, बीज नहीं, आकार है, वस्तु नहीं, देह है, आत्मा नहीं। भक्ति का बीज और उसकी आत्मा सामान्य लोक जीवन की मुक्ति कामना में है। यह एक विशेष सामाजिक परिस्थिति की उपज है। अपभ्रंश के उत्थान युग में वह परिस्थिति न थी, इसीलिए उसमें ये भाव भी उत्पन्न हो सका। इसलिए जिस प्रकार सूफियों के प्रेमाख्यानों पर अपभ्रंश के कथा और चरित काव्यों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, उसी प्रकार राम भक्त और कृष्ण भक्त कवियों की मूल भावना पर भी अपभ्रंश के राम कृष्ण काव्यों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। राहुल जी ने स्वयंभू की रामायण और तुलसी के रामचरितमानस में रूप विन्यास संबंधी कुछ थोड़ी सी समानताओं को देखकर जो ये कह दिया है कि तुलसी बाबा ने स्वयंभू रामायण को जरूर देखा होगा, वह अतिकथन है। अपने इस अतिकथन पर राहुल जी को भी थोड़ा संकोच हुआ, इसलिए वे आगे कहते हैं, तुलसी बाबा ने स्वयंभू रामायण को देखा था, मेरी इस बात पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुलसी बाबा ने क्विचिदत्पि से स्वयंभू रामायण की ओर ही संकेत किया है। ऐसी अटकलबाजियां मनोरंजक हो सकती हैं, लेकिन इससे किसी तथ्य का ठीक पता नहीं चल सकता। इस तरह की पहेली बुझौवल का काम लाल बुझकड़ के ही ऊपर छोड़ना चाहिए। स्वयंभू रामायण को तुलसी ने देखा था या नहीं देखा था और क्विचिदत्पि में स्वयंभू रामायण की ओर संकेत है या नहीं है, इससे कुछ नहीं बनता बिगड़ता। मान लिया कि तुलसी ने ये सब किया है, लेकिन सवाल ये है कि यह सब करने के बाद तुलसी ने जो मानस तैयार किया, उसकी मूल भावधारा का स्वयंभू रामायण से क्या संबंध है? दोनों कृतियों की भाव धाराओं में क्या संबंध है? और इस विषय में अटकलबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। इसे साहित्य का सामान्य पाठक भी कह सकता है कि तुलसी में जो भक्ति भावना की प्रधानता है, वह स्वयंभू में बिल्कुल नहीं है, और इसी भावनाभेद के कारण दोनों की रामकथाओं के स्वरूप में भेद आ गया है। ऐसा नहीं है कि राहुल जी इसको अनुभव नहीं करते, वे इस तथ्य को देखते हुए आश्चर्य प्रकट करते हैं कि तुलसी ने स्वयंभू की सीता की एकाध किरण भी एक हिंदी काव्यधारा अवतरणिका फ्री 0521 पेज नंबर 245 अपनी सीता में क्यों नहीं डाल दिया? थोड़ा सा ही सोचने पर इस सवाल का जवाब मिल सकता है। सीधी बात है कि तुलसी स्वयंभू की सीता जैसी अपनी सीता को नहीं बनाना चाहते थे, और यह जो नहीं बनाना चाहते थे वह कुछ यो ही अकारण ही नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और था, उनकी भी अपनी सीमाएं थीं। फिर यह सवाल तुलसी के ही विषय में क्यों, स्वयंभू के भी विषय में पूछा जा सकता है कि उन्होंने वाल्मीकि की सीता की तरह अपनी सीता को क्यों नहीं बनाया? स्वयंभू ने सीता के संपूर्ण असंतोष की आग को कर्म फल का छींटा देकर बुझा क्यों दिया? इसके अलावा स्वयंभू को तुलसी ने पढ़ा था यह नहीं, ये तो विवादास्पद हो सकता है, लेकिन वाल्मीकि को तो उन्होंने निश्चय ही पढ़ा था, तुलसी भी कहते हैं और दूसरे भी मानते हैं। फिर तुलसी ने वाल्मीकि के ही नमूने पर अपनी रामकथा क्यों न गढ़ दी? ऐसे तमाम क्यों का केवल एक उत्तर कवि का अपना उद्देश्य, परिस्थितिजन्य उद्देश्य। इस ऐतिहासिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अपभ्रंश के राम कृष्ण काव्यों और हिंदी के राम कृष्ण काव्यों की भावधारा में कोई समानता नहीं, कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। यदि कोई संभव संबंध हो सकता है तो वह अत्यंत परोक्ष और पौर्वापर्य का ही हो सकता है। यही बात सूफी प्रेमाख्यानों के बारे में भी कही जा सकती है। अपभ्रंश का सिद्ध साहित्य और हिंदी संत काव्य। भक्ति की यह भावना हिंदी के कबीर संत कवियों की भी अपनी विशेषता है, जो अपभ्रंश के सिद्ध कवियों में नहीं मिलती। कबीर में शब्दों की सहज शून्य साधना का उल्लेख अवश्य मिलता है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी पारिभाषिक शब्दों की आवृत्ति दिखलाई पड़ सकती है, परंतु ये बातें कबीर की मूल भाव धारा नहीं है। सहज और शून्य पर जितना जोर सहज यानी सिद्धों की रचनाओं में दिखाई पड़ता है, उतना कबीर में नहीं है। कबीर के काव्य में इनका प्रयोग पुरानी परिपाटी के अवशेष की सूचना मात्र देता है। कबीर में एक भक्त का जो विह्वल हृदय है, वह सिद्धों में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तात्विक दृष्टि से कबीर का निर्गुण भी सहजयानियों के शून्य से भिन्न है और संभवतः अधिक भावात्मक है। इसलिए कबीर के आत्मा समर्पण में जो तरलता है, वह किसी सिद्ध कवि की रचना में नहीं मिलती। इसमें कोई शक नहीं कि अक्सर कबीर के रूपक सिद्धों से मेल खाते हैं, यहां तक कि उन्हीं से लिए हुए प्रतीत होते हैं। कबीर का बेहद्दी मैदान सरह के उस लोक से भिन्न नहीं है, जहां मन पवन न संचरे, रवि ससी ना पविस। परंतु ये सभी ऊपरी समानताएं हैं। इन सब रूपकों और पारिभाषिक शब्दों के बीच जो मूल भाव है, वह कबीर का अपना है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर पम शून्य हजारी प्रसाद पेज नंबर 246 द्विवेदी बहुत पहले ही विद्वानों का ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं, इसलिए इसकी और अधिक व्याख्या करना आवश्यक है। इस प्रकार हिंदी के आदिकाल में जितनी मुख्य प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, उनका ऐतिहासिक अध्ययन करने से पता चलता है कि हिंदी में अपभ्रंश की जीवंत भाव धारा का विकास अपने ढंग से हुआ। 14वीं शताब्दी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कारण अपभ्रंश से आती हुई भावधारा में इतना अधिक परिवर्तन हो गया कि हिंदी साहित्य में उसने जो संत भक्ति काव्य का रूप लिया, उससे अपभ्रंश की धार्मिक चेतना का सीधा संबंध दिखाई पड़ता। 14वीं शताब्दी का सांस्कृतिक पुनर्जागरण मध्य देश की अपनी सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। यह वह प्रदेश है जिसमें जैन धर्म का जोर कभी नहीं था। अपभ्रंश की रचनाएं भी इस भूभाग में नहीं हुई, इसलिए अपभ्रंश के अधिकांश साहित्य से इस जाति का सीधा संपर्क कभी नहीं रहा। ऐसी दशा में जैनों के अपभ्रंश साहित्य से अवधी और ब्रज के संत भक्ति काव्य का अभ्युदय दिखलाना हथेली पर सरसों उगाने का सा काम होगा। अधिक से अधिक इन दोनों साहित्यों में परोक्ष संबंध ही दिखाई पड़ता है। ये परोक्ष संबंध ये है कि दोनों के अभ्युदय के मूल में मुख्यतः लोक जीवन का ही हाथ है। अपभ्रंश ने भारतीय साहित्य की जिस गति को लोक जीवन से दूर जाते देखकर फिर उसके साथ कर दिया, उसी प्रयत्न के फलस्वरूप हिंदी आदि आधुनिक साहित्यों का अभ्युदय हुआ। इसलिए अपभ्रंश काव्य में ये जो लोक हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती है, वही आगे चलकर और भी स्पष्ट रूप से अवधी ब्रज राजस्थानी आदि साहित्यों के आदिकाल में सुनाई पड़ती है। हिंदी के लिए ये पृष्ठभूमि तैयार करके अपभ्रंश ने ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया। काव्य रूप भावधारा की अपेक्षा काव्य रूपों में परंपरा का पालन अधिक देखा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि नवीन भाव धारा के आ जाने पर भी काव्य के रूप पुराने ही चलते रहते हैं। हिंदी के काव्य रूपों का अध्ययन करते समय ये तथ्य स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। अपभ्रंश से अधिक विकसित और नवीन भावधारा को अपनाकर भी हिंदी कविता बहुत दिनों तक अपभ्रंश के ही अधिकांश काव्य रूपों को अपनाए रही। इसीलिए हिंदी काव्य रूपों के क्षेत्र में अपभ्रंश की देन भावधारा की अपेक्षा अधिक है। छंद काव्य रूपों के मूल में प्रायः छंद हुआ करता है। यदि वाक्य भाषा की इकाई है तो छंद वाक्य की भंगिमा है। इसीलिए जब भाषा में कोई परिवर्तन होता है तो उसके छंदों में भी परिवर्तन हो जाता है। जब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत की एक हिंदी साहित्य की भूमिका प्री शून्य 4243 पेज नंबर 247 अवस्था के बाद लौकिक संस्कृत हुई तो तमाम वैदिक छंद बदल गए और अनुष्टुप लौकिक संस्कृत के प्रथम छंद होने का गौरव लेकर आदिकवि की जिह्वा पर आया। इसके बाद तो संस्कृत में छंद आए। पाली संस्कृत से विशेष भिन्न थी, इसीलिए पाली के छंद भी प्रायः संस्कृत के ही रहे, लेकिन प्राकृत संस्कृत से काफी भिन्न थी, इसलिए उसके छंदों की व्यवस्था भी बदल गई। और जिस तरह अनुष्टुप लौकिक संस्कृत का अग्रदूत था, उसी प्रकार गाथा प्राकृत भाषा की अग्रदूती बनकर सामने आई। अपभ्रंश के साथ आर्य भाषा के व्याकरण में कुछ मौलिक परिवर्तन हुए, इसलिए आर्य भाषा के छंदोबंध में भी इसके साथ मौलिक परिवर्तन हुआ। इससे पहले प्रायः वर्णिक छंद होते थे जिनमें विभिन्न गणों के अनुसार शब्दों का क्रम होता था। अपभ्रंश ने पहली बार मात्रिक छंदों का सूत्रपात किया। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश से पूर्व छंद तुकांत नहीं होते थे। अपभ्रंश ने छंद के क्षेत्र में तुकानत प्रथा चलाई। तब से आज तक हिंदी में मात्रिक छंदों की ही प्रधानता है। अपभ्रंश के बाद हिंदी के साथ आर्य भाषा में कोई बहुत मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए आरंभिक हिंदी के छंद भी प्रायः अपभ्रंश के ही रहे। जिस हद तक परिवर्तन भाषा में हुआ, उस हद तक हिंदी में नए छंद भी आए। यदि इस सामान्य सिद्धांत को हिंदी की विभिन्न बोलियों के छंद भेद पर लागू किया जाए तो पता चलेगा कि बरवै जैसे कई एक छंद ऐसे हैं जो अवधि के एकदम अपने हैं, ब्रज में वे नहीं चलते। इसी तरह जब खड़ी बोली काव्य भाषा हुई तो इसमें पुरानी अवधि और ब्रज भाषा के छंदों से काम न चला, फलतः उसने नए छंदों की सृष्टि की। छंदों के परिवर्तन से काव्य रूपों में किस प्रकार परिवर्तन आता है, इसे यदि देखना हो तो पुनः संस्कृत से इसकी परंपरा पर दृष्टिपात किया जा सकता है। आरंभ में जब संस्कृत में अनुष्टुप जैसे छोटे छोटे छंद थे तो मुक्तकों का आरंभ नहीं हो सका। उन छोटे छोटे छंदों में रामायण महाभारत जैसे बड़े बड़े धारावाहिक प्रबंध काव्यों की ही रचना हो सकती थी। पीछे जब कुछ बड़े बड़े छंदों की रचना हुई तो यही नहीं कि मुक्त रचनाएं अस्तित्व में आईं, स्वयं प्रबंध काव्यों का भी ढांचा बदल गया। रामायण एक कांड के भीतर छोटे छोटे कई अध्यायों में विभक्त किया गया था। इसी तरह महाभारत में भी एक पर्व के भीतर कई अध्याय रखे जाते थे जिनमें से प्रत्येक अध्याय में सामान्यतः 100-150 छंद होते थे। पीछे कालिदास के समय से जब कुछ बड़े छंदों का प्रचलन हो चुका था तो प्रबंध काव्य में कांड अथवा पर्व और अध्याय के बीच का रास्ता निकाला गया। नए प्रबंध काव्यों के सर्क पुराने महाकाव्यों के अध्याय से कुछ बड़े और पर्व अथवा कांड से काफी छोटे हो गए। बहुत संभव है कि यदि मंदाक्रांता शार्दूल विक्रीरित स्निग्धरा शिखरिणी जैसे बड़े छंद संस्कृत में न आए होते तो अमरुक शतक श्रृंगार शतक नीति शतक वैराग्य शतक आर्या सप्तशती चौरपंचाशिका मेघदूत आदि जैसे मुक्तकों की सृष्टि न पेज नंबर 248 होती। अनुष्टुप में उत्कृष्ट मुक्तक नहीं लिखे जा सकते, वह मूलतः कथाबंध का ही छंद है। यही बात आगे चलकर अपभ्रंश में भी दिखाई पड़ती है। चरित काव्य के लिए प्रधानतः अपभ्रंश में पद्धरिया या पद्धरी छंद को ही अपनाया गया। एक रस्ता दूर करने के लिए बीच बीच में दूसरे छंदों का भी प्रयोग किया गया, लेकिन कहानी कहने के लिए मुख्य छंद वही अथवा वैसा ही कोई छोटा छंद हुआ करता था। दोहा अपभ्रंश का छोटा ही छंद कहा जाएगा, लेकिन उसमें इतनी स्वरगत भंगिमाएं हैं कि उससे कथा प्रवाह में रुकावट आती है। एक तो उसमें चार यतियां होती हैं, दूसरे उसकी प्रत्येक यति का चरण विषम होता है। इस प्रकार अपभ्रंश का दोहा प्राकृत की गाथा की भांति मुक्तक काव्य के ही काम का है। आगे चलकर जब अपभ्रंश में रासा कव्व दुवई जैसे बड़े बड़े छंद आए, तो उनके साथ ही विशेष प्रकार के गेय और मुक्तका काव्यों की भी सृष्टि हुई। यही क्रम हिंदी में भी दिखाई पड़ता है। चौपाई प्रबंध काव्य के लिए और सवैया घनाक्षरी छप्पय कुंडलिया आदि मुक्तक के लिए निश्चित कर लिए गए। रहा दोहा, सो यह अपभ्रंश काल से ही प्रबंध और मुक्तक दोनों घरों में सम्मान पाता रहा है। आधुनिक हिंदी में नए ढंग के तुकांत मात्रिक छंदों ने प्रगीत मुक्तक लिरिक जैसे नए काव्य रूप को जन्म दिया, और मुक्त छंदों में प्रगीत मुक्तकों से भिन्न विशेष प्रकार की लंबी कविताओं को सामने रखा, जैसे निराला की संध्या सुंदरी अथवा प्रसाद की प्रलय की छाया। उद्धरण: इस प्रकार छंद परिवर्तन के साथ काव्य रूप में परिवर्तन अनिवार्य है। इसी बात को कहना चाहें तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब काव्य रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता समझी जाती है, तो छंदों में भी परिवर्तन कर लिया जाता है। जो हो, इन सब के मूल में भावोद्गार जनित आवश्यकता ही है। भावोद्गार के अनुसार ही छंद और काव्य रूप बदलते हैं। इन दोनों का संबंध इतना अन्योन्याश्रित है कि इनमें से कौन पहले बदलता है, ये कहना कठिन है। फिर भी दूर तक विश्लेषण करने पर ऐसा ही प्रतीत होता है कि छंद में परिवर्तन काव्य रूप से पहले होता है। इस दृष्टि से हिंदी छंदों के विकास में अपभ्रंश छंदों के योग का अध्ययन किया जा सकता है। हिंदी का दोहा अपभ्रंश की देन है, ये तथ्य इतना प्रतिष्ठित और प्रचलित है कि प्रमाणित करने की आवश्यकता अब नहीं है। चौपाई के बारे में कई वर्ष पहले लोगों के मन में धुंधल का अवश्य था कि इसका मूल उत्स अपभ्रंश में है या नहीं। पम शून्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आज से लगभग 14 वर्ष पहले इसका संबंध अपभ्रंश के अलिल्लाह छंद से बतलाया था। वह स्थापना आज भी अपनी जगह पर एकदम एक। हिंदी साहित्य को भूमिका फ्री 059 पेज नंबर 249 सही है, परंतु अपभ्रंश में चुपई नामक छंद मिलता है जिसके एक चरण में 15 मात्राएं होती हैं और तुकांत में क्रमशः गुरु लघु 51 आते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभ के अपभ्रंश कवि विनयचंद सूरी ने चुपई छंद में नेमिनाथ चुपई नाम का समूचा काव्य ग्रंथ ही लिख डाला है। उसकी एक चुपई का उदाहरण इस प्रकार है। श्रावणी सर्वणी कंडू मेहु गजजई विरहिणी झिझी देहु विजजू झबकर रखसी जेव नेमिहि विनु सही सही ऐ केव। विनयचंद सूरी की चुपई हिंदी में जायसी आदि द्वारा प्रयुक्त तथा पिंगलाचार्य द्वारा स्वीकृत चौपाई ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार चौपाई शब्द में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई शब्द बना लिया गया, उसी प्रकार चौपाई छंद के अंत में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई छंद गढ़ लिया गया। आरंभ में ये छंद संभवतः चौपाई ही था, परंतु गाने के क्रम में संभवतः ये लद्ध्वंत से गुरवंत हो गया। जायसी में तो प्राय, लेकिन तुलसी में कहीं कहीं चौपाइयों के बीच में एकाध अर्धाई चौपाई की भी आ जाती है। अवधि की लघवंत प्रवृत्ति के अनुसार आरंभ में शायद उस भाषा में चौपाई का ही प्रचार रहा होगा। हिंदी का दूसरा प्रिय छंद काव्य अथवा रोला है। इस छंद का प्रचलन अपभ्रंश में कम से कम धनपाल 10वीं शताब्दी ईस्वी के समय से मिलता है। दूसह पिय वियोय संततउ मुच्छई पत्त सियल मारुअन वनी बायु तनु अपायु करिली नायुद संजेवी पुनु पुनु जोयवी तेन पहेन पुनु वी संचल्लियु विरहिही सल्लियु। जिस प्रकार हिंदी में काव्य अथवा रोला के साथ अंत में उल्लाला छंद जोड़कर छह चरणों का छप्पय षटपद बना लिया जाता है, उसी प्रकार अपभ्रंश में भी होता था। परंतु अपभ्रंश के आरंभिक काव्यों में रोला और उल्लाला को मिलाकर इस प्रकार का छप्पय बनाने की प्रवृत्ति कम दिखाई पड़ती है। भविष्यत कहा में अलग अलग रोला और उल्लाला दोनों हैं, लेकिन इन दोनों से बना हुआ छप्पय कहीं नहीं मिलता। परवर्ती अपभ्रंश में इसी तरह के छप्पय मिलने लगते हैं। संदेशरासक में इस तरह के पांच छप्पय दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से एक छप्पय इस प्रकार है झपवी तम वदलिन दसह देसी छायु अम्बरु उन्नवियो घुरहुरी घोरु घनु किसनाडम्बरु अनहमग्गी अनहवलिय तरल तदैडी वी तटका दहुर रडनु रौद्दु सद्दु कुवी सहवी अना सक्कर। पेज नंबर 250 निव्ध निरंतर नीर दुधर धरधारो भरु किम सहऊ पहिय सिहटिट्यई दुसहऊ कोयल सरई सरु 148। हिंदी में इन अत्यधिक प्रचलित छंदों के अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध छंद घनाक्षरी है, जिसका कोई रूप अभी तक अपभ्रंश में प्राप्त नहीं हो सका है। हिंदी में भी यह छंद बाद में आया। इतनी शताब्दियों तक निरंतर प्रक्षिप्त होते रहने वाले पृथ्वीराज रासो में भी इसके दर्शन नहीं होते। इसका मतलब इसके मूल उत्स का पता नहीं चलता, तब तक अटकलबाजी करना व्यर्थ है। बहुत संभव है ये हिंदी की अपनी ही सृष्टि हो। सवैया स्पष्ट रूप से वर्णिक गणवृत्त है, इसलिए इसकी प्राचीनता अनिवार्य है और संस्कृत में ही इसका मूल उत्स मिलना चाहिए। ये तो सही है कि 7-8 गण के 4 चरणों का ऐसा कोई वर्णिक वृत्त संस्कृत में नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्कृत के किसी वर्णिक वृत्त के गणों को द्विगुणित करके बनाया गया है। संस्कृत का जो वर्णिक वृत्त द्विगुणित किए जाने पर आसानी से दुर्मिल सवैया हो जाता है, वह है 4 सगण वाला त्रोटक छंद। लेकिन ये स्पष्ट रहना चाहिए कि त्रोटक संस्कृत का लोकप्रिय छंद नहीं है और इसका विकास निश्चित रूप से बहुत बाद का है। पृथ्वीराज रासो में सवैया तो नहीं मिलता, लेकिन त्रोटक छंद काफी हैं। किस प्रकार एक त्रोटक छंद द्विगुणित करके सवैया बनाया जा सकता है, पृथ्वीराज रासो के 2 त्रोटक लेकर समझा जा सकता। जल सैसव मुद समान भयम रवि बल बहिक्रम लयाथ्यम बर सैसव जोबन संधि अति सुमिले जनु खितह बाल जति जूरही लगी सैसव जुब्बनता सुमनो ससी रंतन राजहिता जुछले मुरी मारुत छनकुरता सुमनो सुरबेस मुरी मुरिता शशिव्रता विवाह। कमी रह गई है तो केवल 4 चरणों के सम तुकांत की। लेकिन जो कवि त्रोटक की दुगुना कर सकता है, वह उसके 4 चरणों को तुकांत भी बना सकता है। इस तरह जब एक सवैया बन गया तो उसमें थोड़ा सा हेर फेर कई सवैये बनाए जा सकते हैं और सचमुच बनाए भी गए। छंद अंगिनत हैं और अपभ्रंश तथा हिंदी छंदों का तुलनात्मक अध्ययन अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। यहाँ केवल कुछ ही छंदों पर विचार करना संभव है। हिंदी में अपभ्रंश के काव्य रूपों का निर्वाह और सुधार। कहा जा चुका है कि छंद काव्य रूपों को निर्धारित और प्रभावित करते हैं। वर्णनात्मक छंद कथात्मक काव्यों का रूप निर्धारित करते हैं और गे छंद मुक्तक पेज नंबर 251। काव्यों का वर्णनात्मक छंदों में चौपाई का उल्लेख किया जा चुका है, परंतु निरंतर चौपाई में ही कहानी कहने से वर्णन में एकरसता आ जाने की आशंका रहती है। यदि लगातार चौपाई सुनते सुनते श्रोता ऊंघने लगेगा तो वक्ता की भी सांस फूल जाएगी। वक्ता और श्रोता दोनों के लिए कुछ चौपाइयों के बाद विश्राम आवश्यक है। विश्राम के लिए छंद बदलना सबसे सुंदर उपाय है। ऐसा भी देखा जाता है कि यदि कवि छंद नहीं बदलता तो ऐसे कथात्मक काव्यों को गाते समय गायक अपने स्वरों के द्वारा उसमें परितर्वन कर लेते हैं। गांवों में गाया जाने वाला आल्हा ऐसा ही धारावाहिक काव्य है जिसमें आद्योपांत एक ही वीर छंद का प्रयोग किया गया है, परंतु उसे कहने और सुनने में सुखद बनाने के लिए गायक नट कभी तो गद्य की तरह सीधे सीधे कहते चलते हैं और कभी रुककर गाने लगते हैं। जो समझदार होते हैं वे सीधे सीधे कहने और गाने वाले स्थलों में विवेक कर लेते हैं, अर्थात कोरे घटनात्मक प्रसंग को तो कहते जाते हैं, लेकिन जहां थोड़ा सा भावनात्मक स्थल आता है वहां रुककर वे गाने लगते हैं। वक्ता और श्रोता की इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कथात्मक काव्यों के कवि कुछ चौपाइयों के बाद दूसरे छंद के प्रयोग की योजना करते आए हैं। चौपाई के बाद जो छंद आसानी से इस कार्य के लिए मिल सकता था वह दोहा है। दोहा एक तो सहज सुलभ और अत्यधिक लोक प्रचलित था, दूसरे वह छोटा भी है। किसी बड़े छंद के प्रयोग से धारावाहिकता में बाधा पड़ने की भी आशंका रहती है। अपभ्रंश में इस कार्य के लिए घत्ता दुवई उल्लाला आदि अनेक छंद इस्तेमाल किए जाते थे। ऐसा लगता है कि अंतिम दिनों में इनमें से किसी एक छंद को निश्चित कर देने की मनोवृत्ति हो चली थी। हिंदी तक आते आते चौपाइयों के बाद दोहा का घत्ता देने की परिपाटी निश्चित हो गई। इस व्यवस्था में एकरूपता ले आने के लिए आगे चलकर यह भी निश्चित कर दिया गया कि 7 या 8 अर्धालियों के बाद ही दोहा रख जाना चाहिए। कहीं कहीं इसके अपवाद भी मिलते हैं। इसके अपवाद तुलसीदास जैसे अत्यंत सतर्क और व्यवस्थित कवि में भी हैं, लेकिन ऐसा वहीं हुआ है जहां भाव प्रसार अथवा घटना कम को देखते हुए निश्चित चौपाइयों के बाद दोहा रखने से प्रवाह में बाधा पड़ने की आशंका है। गे काव्य के रूपों में अपभ्रंश काव्य बहुत समृद्ध था। रास फाग चांच रसायन कुलक आदि अनेक प्रकार के गे काव्य अपभ्रंश में प्रचलित दिखाई पड़े हैं। रास काव्य मूलतः रास छंद का समुच्चय है। अपभ्रंश में 21 मात्रा का एक रासा या रास छंद प्रचलित था और ऐसे ही अनेक छंदों को गाने की परिपाटी संभवतः लोक में रही होगी। यहां भी एकरसता दूर करने के लिए रास छंदों के बीच इतरगे छंदों को भी संबंधित कर लेने की संभावना जान पड़ती है। संदेश रासक से इस प्रकार के गे और मुक्तक रासक काव्यों के रूप का पता चलता है। निश्चय ही रास काव्य मूलतः रास छंद प्रधान काव्य रहे होंगे जैसा कि संदेश रासक है। पेज नंबर 252। आगे चलकर रास काव्य एक ऐसा काव्य रूप निश्चित हो गया जिसमें किसी भी गे छंद का प्रयोग किया जा सके। भाव की दृष्टि से ये फिर भी प्रेम भाव प्रधान रहे। हिंदी का वीसलदेव रास ऐसा ही रास काव्य है जिसमें किसी अन्य गे छंद का इस्तेमाल किया गया है, फिर भी वह प्रेम भाव प्रधान ही है। जब काव्य विशेष का एक रूप बन जाता है तो कभी कभी उसे दूसरे भावों और विचारों का भी वाहन बना लिया जाता है। रास काव्य के साथ ऐसा ही हुआ। मूलतः ये कीमल भावों के लिए प्रयुक्त होने वाला गे मुक्तक था, लेकिन दूसरी ओर यह काव्य रूप वीरों की गाथाओं के लिए भी काम में लाया गया। जिस तरह अंग्रेजी का सोनेट मूलतः प्रेम भावापन मुक्तक था, किंतु आगे चलकर अन्य भावों का भी वाहन बना लिया गया, उसी प्रकार अपभ्रंश और हिंदी का रास काव्य भी इत्र भावों विचारों और घटनाओं के लिए अपनाया गया। अपभ्रंश में इस प्रकार के कई रास काव्य हैं जैसे बाहुबली रास समर रास आदि, और हिंदी में ऐसे ही रास काव्यों का सिरताज पृथ्वीराज रासो है। यही सब देखते हुए अपभ्रंश के आचार्यों ने दो प्रकार के रास काव्यों का उल्लेख किया है, कोमल और उद्धत। इन दोनों के मिश्रण से बनने वाले मिश्रित प्रकार के रास काव्य की भी चर्चा की गई है। ये भेद किए तो गए हैं रास रूपकों के, किंतु रास काव्यों के विषय में भी समान रूप से लागू होते हैं। प्रेम और युद्ध को एकदम अलग अलग वर्गों में बांटना जितना कठिन जीवन में है, उतना ही कठिन काव्य में भी। उद्धत धन के युद्ध प्रधान रास काव्यों में प्रेम भावना का समावेश अस्वाभाविक नहीं है। यही कारण है कि पृथ्वीराज रासो जैसे रास काव्य एक प्रकार से युद्ध और प्रेमयुक्त मिश्रित रास की कोटि में आ जाते हैं। एकदम युद्ध प्रधान रास प्रधान का उदाहरण अपभ्रंश में बाहुबली रास और हिंदी में हम्मीर रासो माना जा सकता है। एक भाव के लिए निर्मित काव्य रूप किस प्रकार दूसरे भाव या विचार के लिए प्रयुक्त होता है, इसके लिए जिंदत सूरी के उपदेश रसायन रास को देखा जा सकता है। इसमें युद्ध और प्रेम दोनों को हटाकर धर्मोपदेश दिया गया है। इस प्रकार रास अथवा रासक नामक एक सामान्य गेय छंद ने इतने रूप बदले। अपभ्रंश के अन्य गेय काव्य रूपों में से चांचरी का केवल एक नमूना मिलता है, जिंदत सूरी की चांचरी अथवा चच्चरी। इस चांचरी में भी रासा छंद का ही व्यवहार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चांचरी कोई लोकगीत था और शायद उस गीत में विशेष लय का छंद व्यवहारित होता था, लेकिन लिखित साहित्य में वह काव्य रूप की तरह मान लिया गया। हिंदी में कबीरदास के नाम से चलने एक हेमचंद कृत काव्यानुशासन 8141 पेज नंबर 253 वाले कुछ गीत चांचरी के नाम से मिलते हैं। जिंदत सूरी की चांचरी में जैन धर्म के उपदेश हैं, जैसे जही साव्य तम बोलू न भक्खही लिंती नय, जही पान हिय धरंती त साव्य सुद नय, जही भोइनु न सयन न अनुचियु बैसनऊ, सह पहरणी न पवेजु न दुठउ बुलनऊ। फाग भी इसी प्रकार का एक लोक गीत है जो बसंत में गाया जाता है। विषय बसंत के ही अनुसार होता है। ये परंपरा निश्चय ही काफी पुरानी होगी। अपभ्रंश के समय भी इसका प्रचलन था, लेकिन इसका विषय ठीक ठीक क्या था ये जानने का साधन हमारे पास कोई नहीं है। जैन कवियों ने जिस विषय पर फाग लिखा है उसमें उनकी अपनी धार्मिक विचारधारा का समावेश स्वाभाविक है। जिनपद्म सूरी का लिखा हुआ एक फाग थूलिभद्द के चरित पर अब भी उपलब्ध है। इससे प्रायः काव्य या रोला छंद का व्यवहार किया गया है और तीन रोला के बाद दोहा का घत्ता दिया गया है, जैसे पावस वर्णन के प्रसंग में तीसरा रोला और दोहे घत्ता इस प्रकार है। सियल कोमल सुरही वाय जिम जिम वायन्ते, मान मदप्फ माननी तिम तिम नाचिन्ते, जिम जिम जलधर भरिय मेह गयनंगनी मलिया, तिम तिम कामितना नयन नीरही झलहलिया, मेहोव भर रूलटिय जिमी जिमी नाचई मोर, तिम तिम मानिनी खलभली साहिता जिमी चोर। हिंदी में कबीरदास के नाम से इसी तरह के कुछ वसंत मिलते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि अपभ्रंश के जैन कवियों ने जिन जिन लोकगीतों को साहित्यिक रूप दिया था उन्हीं उन्हीं लोकगीतों को हिंदी कवि भी अपनाएं। हिंदी काव्य रूपों पर अपभ्रंश काव्य रूपों के प्रभाव का निर्णय इतने स्थूल ढंग से नहीं होना चाहिए। मुख्य प्रश्न है उन काव्य रूपों के प्रभाव को अपनाने के पीछे काम करने वाली मनोवृत्ति का, और यहाँ यह मनोवृत्ति है लोक प्रचलित गीतों को सामान्य रूप से साहित्यिक बनाने की, अपने आदर्शों के प्रचार के लिए अपनाने की। अपभ्रंश के कवि इस दिशा में हिंदी कवियों के पथ प्रदर्शक हैं। इसी मनोवृत्ति के फलस्वरूप आगे चलकर तुलसीदास ने रामलला नहचू आदि की रचना की। हिंदी में पद नाम से कुछ ऐसे गीत मिलते हैं जिन्हें संतों और भक्तों ने गाने के लिए लिखे थे। सूरदास का संपूर्ण सूर सागर पदों में ही है, मीरा ने केवल पद ही गाए। पद कबीर ने भी कहे और तुलसी की गीतावली तथा विनय पत्रिका पेज नंबर 254 पदों में ही है। पदों की परंपरा अपभ्रंश में सिद्धों के यहाँ ही मिलती है। सिद्धों के चर्यापद गे पद है। इस तरह अपभ्रंश और हिंदी के कुछ काव्य रूपों के तुलनात्मक अध्ययन से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि इस क्षेत्र में अपभ्रंश की देन हिंदी को सबसे अधिक है। काव्य रूढ़ियाँ। जिस प्रकार एक साहित्य की भाव और विचार संबंधी रूढ़ियाँ दूसरे साहित्य में प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह काव्य के रूप विधान संबंधी कुछ रूढ़ियाँ भी अवशिष्ट रह जाती हैं। ऐसी काव्य रूढ़ियाँ शताब्दियों तक चलती रहती हैं। जैसे प्रबंध काव्य के आरंभ में मंगलाचरण, आत्मा निवेदन, दुर्जन निंदा, सज्जन प्रशंसा आदि और मुक्तक काव्य में कवि का नाम रखने की प्रथा। इस तरह की रूढ़ियाँ उसी समय रूढ़ी का रूप धारण करती हैं जब किसी समाज की चिंताधारा गतिरुद्ध हो जाती है। उपर्युक्त काव्य रूढ़ियाँ वाल्मीकि और कालिदास में नहीं मिलती, लेकिन इन महाकवियों के बाद बाणभट्ट, माघ, श्रीहर्ष आदि में इनमें से किसी में कुछ का तथा किसी में सबका पालन किया गया है। अपभ्रंश काल में ये रूढ़ियाँ और जोर पकड़ गईं और हिंदी तक पहुँचते ये स्थिति हो गई कि तुलसीदास जैसे महाकवु ने इनका पालन करने में सबसे अधिक तत्परता दिखाई। रामचरितमानस में मंगलाचरण, आत्मा निवेदन, दुर्जन निंदा और सज्जन प्रशंसा सभी पूर्ववर्ती कवियों से अधिक है। यही बात मुक्तकों में कवि द्वारा अपना नाम रखने की मनोवृत्ति में दिखाई पड़ती है। संस्कृत में ऐसा किसी कवि ने नहीं किया। अपभ्रंश में भी केवल सरह के दोहों में ये प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। पीछे कबीर सूर तुलसी मीरा जैसे भक्तों तथा केशव देव मतिराम भूषण पद्माकर आदि रीति कवियों ने भी इसका पालन किया। यहाँ एक उल्लेखनीय बात है कि बिहारी जैसे रूढ़ी सिद्ध कवि में ये प्रवृत्ति नहीं है। यही बानक मो मन बसे सदा बिहारी लाल जैसे दोहे अपवाद हैं, और यहाँ भी बिहारी लाल वृंदावन बिहारी हैं। इन तमाम रूढ़ियों का अंत आधुनिक युग में ही संभव हो सका जब राष्ट्रीय जागरण ने बहुत व्यापक रूप से प्राचीन रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह किया। फिर भी उन रूढ़ियों को ढोले वाले अतीत के मनह प्रवासी कवि आज भी मिल ही जाते हैं। रूप विधान संबंधी इन रूढ़ियों के अतिरिक्त काव्य की कुछ ऐसी रूढ़ियाँ हैं जो मूलतः किसी न किसी भाव या विचार का प्रतीक थीं, किंतु धीरे धीरे रूढ़ एक काव्य रूपों के विशेष अध्ययन के लिए देखिए डॉक्टर शून्य द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल पंचम व्याख्यान पेज नंबर 255। होकर अपनी मौलिक भाव संपदा की ओर संकेत करने की शक्ति खो बैठी और परवर्ती काल के काव्यों में रूप विधान का ही एक अंग बन गई। नख शिख वर्णन संध्या उषा वर्णन तथा किसी उद्यान के फूलों का वर्णन आदि कुछ ऐसी ही काव्य रूढ़ियाँ हैं। मध्य युग में किसी नारी के नख शिख वर्णन में प्रयुक्त होने वाली कुछ उपमाएं ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रक्रिया और वर्णक्रम एक निश्चित ढांचे पर हुआ करता है। पृथ्वीराज रासो में इंचिनी और शशिव्रता का रूप वर्णन और पद्मावत में पद्मावती का विस्तृत नख शिख वर्णन इस प्रकार की चिराचरित परिपाटी का पता देते हैं। नख शिख वर्णन संबंधी यह रूढ़ियाँ स्वयंभू और पुष्पदंत के काव्यों से ही मिलने लग जाती हैं। इसी प्रकार यदि संदेश रासक में वर्णित सामोर की पेड़ पुष्प सूची को पद्मावत के वसंत वर्णन में आए हुए फूलों की सूची से मिलाकर देखा जाए तो इन फूलों पौधों के नाम से ही नहीं बल्कि उनके क्रम में भी एक बधी बधाई परिपाटी का आभास मिलेगा। यही बात युद्ध वर्णन के प्रसंग में शस्त्रों की तालिका आदि के बारे में दिखाई पड़ती है। संस्कृत काव्य के आरंभिक युग से कुछ पशु पक्षियों तथा पुष्पों को लेकर थी, जैसे हंस। कवियों के समाज में काल्पनिक धारणाएं चल नीर क्षीर विवेक अथवा सुंदरियों के नूपुर शिंजित चरणों के आघात से अशोक का खिलना। आचार्यों ने इन्हें कवि समय नाम दे रखा है। यदि इन कवि समयों के इतिहास का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि अशोक कुर्बक तिलक आदि फूलों संबंधी कवि समयों का जितना प्रचलन कालिदास के युग में था उतना परवर्ती युग के कवियों में कभी न रहा। अपभ्रंश काव्यों में ये कवि समय क्वचित कदाचित ही दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण शायद ये है कि जैनों के बुद्धिवाद ने इन धारणाओं में विश्वास न जमने दिया। लेकिन हिंदी के काव्यों में भी फूल संबंधी ये कवि समय कम अपनाए गए, वहां केवल हंस चकोर चक्रवाक संबंधी कवि समयों का ही निर्वाह हुआ। कथानक संबंधी मोटिफ या रूढ़ी अशोक हंस संबंधी ये कवि समय वस्तुतः एक प्रकार के मोटिफ हैं, जो छोटे होते हुए भी अत्यंत प्रसंग गर्भी हैं। भारतीय चित में अशोक हंस आदि केवल पुष्प पक्षी नहीं रह गए हैं, बल्कि ये ऐसे मोटिफ हैं जो निश्चित कथा खंडों की व्यंजना करते हैं। अशोक केवल अशोक नहीं है, वह अपने आप में एक पूरी कहानी है। भारतीय कथाओं में ऐसे अनेक लघु कथा व्यंजक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। The motif is the smallest recognizable element that goes to make up a complete story. Shipley, Dictionary of World Literature, Folk Tale, pre-247, 1. Page number 256. कथाओं में प्रयुक्त होने वाले इन प्रतीकों को कथात्मक motif कहा जा सकता है। धीरे धीरे ऐसे अनेक सजातीय कथात्मक प्रतीकों के संयोग से कथात्मक टाइप बन जाते हैं। दोहद एक ऐसा ही कथात्मक मोटिफ है। जिस प्रकार मूर्ति और चित्रकला में कुछ विशेष भावों के व्यंजक मोटिफ होते हैं, उसी प्रकार कथा काव्य के अपने विशिष्ट मोटिफ हैं। इस विषय में साहित्यिक कथानकों की अपेक्षा लोक कथाएं अधिक समृद्ध दिखाई पड़ती हैं। लोक कथाओं में ये प्रतीक क्रमशः रूढ़ी बन जाते हैं। कालांतर में अनेक रूढ़ियाँ अप्रचलित होती रहती हैं और बहुत सी नई रूढ़ियाँ स्थापित होती चलती हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास में इन कथात्मक रूढ़ियों की एक दीर्घ परंपरा पाई जाती है, जो विभिन्न मत मतांतरों धर्मों संस्कारों जातीय प्रथाओं के बावजूद संस्कृत पाली प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई हिंदी बंगला आदि आधुनिक साहित्यों में भी बहुत कुछ सुरक्षित है। अपभ्रंश के कथा काव्यों का अध्ययन करने से पता चलता है कि उनमें संस्कृत कथाओं की अनेक कथानक रूढ़ियों का निर्वाह किया गया है। यहाँ संस्कृत काव्यों तथा अपभ्रंश काव्यों में एक मौलिक अंतर दिखाई पड़ता है। कथानक रूढ़ियों का उपयोग संस्कृत काव्यों में उतना नहीं हुआ है, जितना अपभ्रंश काव्यों में वाल्मीकि रामायण और स्वयंभू के पौंचरयु की तुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। पौंचरयु का सारा विद्याधर कांड और अयोध्या कांड का उत्तराद ऐसे ही कथात्मक प्रतीकों के लिए लिखा गया प्रतीत होता है। उसमें विविध आनुषंगिक प्रसंगों की योजना किसी न किसी मोटिफ के लिए ही की गई है। संस्कृत साहित्य में कथानक रूढ़ियों से भरी रहती हैं। कथात्मक प्रतीकों के विषय में जितनी रूढ़िवादी लोक कथाएं हैं अवश्य, लेकिन उनकी बहुलता पंचतंत्र कथासरित सागर आदि आख्यायिकाओं तथा पुराणों में है। इसका कारण ये है कि ये आख्यायिकाएं और पुराण मुख्यतः लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं और लोक कथाएं कथानक कथाएं होती हैं, उतनी साहित्यिक कथाएं नहीं। वहां हर कहानी में राजा के साथ ही रानियां होगी और छोटी रानी को सभी सताती होंगी और उसी रानी का लड़का सबसे अधिक चतुर निकलेगा। रनिवास से निकाली हुई रानी के रोने पर सारे वन का रोना और पत्तियां गिरा देना, फिर उधर से गौरा पार्वती और महादेव जी का निकलना सामान्य रूढ़ी है। यदि लोक गीतों में सर्वत्र सोने की थारी में ज्योना परोसा जाता है, सोने के गडुवा गंगा जल पानी भरा रहता है, लोग खिली खिली बीरा लगाया जाता है और कलियां चुन चुन कर सेज रची जाती है, तो लोक कथाओं में भी प्रायः हिरामन सुआ आता है, गौरा पार्वती महादेव आते हैं, सात समुन्दर पार और सात सिंदरे के भीतर राजकन्या रहती है। एक The importance of the type is to show the way in which narrative motifs form irconventional clusters. Vahi, Prishunya 248. Page number 257. हिंदी के मध्ययुगीन आख्यानक काव्यों के वास्तविक मूल्यांकन के लिए उनमें व्यवहारित होने वाले कथात्मक प्रतीकों के मूल स्रोत का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस आदि को अच्छी तरह समझने के लिए उनमें प्रयुक्त कथानक प्रतीकों की दीर्घ परंपरा से परिचित होना जरूरी है। इस ओर ध्यान न देने के ही कारण ही कभी कभी इन काव्यों के बारे में विचित्र बातें कह दी जाती हैं। पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा न होता यदि आख्यानक काव्यों की रचना में काम करने वाली कथात्मक प्रतीक योजना की प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा जाता। उस युग में जबकि एकदम कल्पित आख्यान को आधार बनाकर काव्य रचना की प्रवृत्ति न थी और इतिहास प्रसिद्ध अथवा लोक विश्रुत चरित नायक के जीवन पर ही काव्य लिखने की प्रथा थी, लोक प्रचलित कथात्मक प्रतीकों की योजना में ही कवि कल्पना को खुले खेलने का अवसर मिलता था। ऐसे ही प्रसंगों में कवि को अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने की छूट मिलती थी। इसीलिए मध्ययुग में प्रायः सभी तथाकथित ऐतिहासिक काव्यों में ऐसे काल्पनिक प्रसंगों का मिश्रण मिलेगा। जिस तरह आधुनिक युग में ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने अपना औपन्यासिक कौशल दिखाने के लिए कुछ मार्मिक प्रसंगों की कल्पना की है, उसी प्रकार प्राचीन युग में कवियों ने ऐतिहासिक काव्यों में चिराचरित कथात्मक प्रतीकों का सहारा लिया है। ये प्रवृत्ति एक और अपभ्रंश में जस चरयू नायकुमार चरयू करकंड चरयू आदि चरित काव्यों तथा ऋषभदेव बाहुबली भरत नेमिनाथ आदि के जीवन से संबंधित काव्यों में देखी जा सकती है, तो दूसरी ओर पृथ्वीराज रासो आदि हिंदी काव्यों में भी ढूंढी जा सकती है। शुक का दौत्य कार्य नायिका को अप्सरा का अवतार कहना, महादेव के मंदिर में नायक नायिका का मिलना, सिंगल द्वीप फल द्वारा संतान की उत्पत्ति लिंग परिवर्तन आदि बातें अनैतिहासिकता द्योतक नहीं बल्कि कथानक रूढ़ी के निर्वाह की सूचक हैं। पृथ्वीराज रासो ऐसी रूढ़ियों का कोष हैं। कभी कभी इन रूढ़ियों के आधार पर पृथ्वीराज रासो के मूल रूप का पता लगाने की चेष्टा की जाती है, लेकिन ये कार्य कितना कठिन है इसका पता इसी से चल सकता है कि इन रूढ़ियों के प्रक्षेप का कोई अंत नहीं है। इनमें से कितनी चंद द्वारा नियोजित हैं और कितनी दूसरों द्वारा, उसको अलगा लेना खेल नहीं है। इसी तरह पद्मावत में प्रयुक्त कथानक रूढ़ियों के विश्लेषण से और भी मनोरंजक तथ्यों की प्राप्ति हो सकती है। सुआ का उपयोग कथात्मक प्रतीक के रूप में संस्कृत साहित्य से ही होता आ रहा है, लेकिन वह हिरामन है, इसका प्रचलन अपभ्रंश से दिखाई पड़ता है। करकंद चरयू में पहली बार हिरामन सुआ का नाम सुनाई पड़ता है और जायसी के यहाँ भी वह इसी नाम से परिचित कराया जाता है। सुआ संबंधी अन्य बातें अत्यंत प्राचीन काल से चली आती हुई मालूम पड़ती। पेज नंबर 258 है, अर्थात ये कि सुआ पंडित है और राज दरबार में आने से पहले वह किस तरह बहेलिया द्वारा पकड़ा जाता है और एक गुणग्राही ब्राह्मण द्वारा खरीदा जाता है आदि। इसी तरह सिंगल द्वीप भी एक मोटिफ है। जो पता नहीं कब से कवियों के रोमांटिक देश का प्रतीक बनकर आ रहा है। वह उतना मनोरम देश है कि उसमें सभी स्त्रियां पद्मिनी ही होती हैं। इसकी ऐतिहासिक और भौगोलिकता को लेकर बहस करना बेकार है। पद्मावत में राजा रतन सेन का 16,000 योगियों के साथ सात समुन्दर पार करना, महादेव के मंडप में पद्मावती से मिलने की प्रतीक्षा करना, पद्मावती के आने पर राजा का मूर्छित हो जाना और उसके चले जाने पर मूर्छा भंग होना, महादेव का कोड़ी के वेश में आना, उस अलौकिक कोड़ी की छाया नहीं पड़ती, उस पर मक्खी नहीं बैठती, उसकी पलकें नहीं गिरती, रतनसेन की वापसी में समुद्र में तूफान का आना, जहाज का भग्न होना, एक तख्ते पर राजा और दूसरे पर रानी का बहना, अलग अलग जगहों में जाना और अंत में अतिमानवीय शक्तियों की कृपा से मिलना आदि ऐसे मोटिफ हैं जो लोक कथाओं में बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और खोजने पर इनमें से कुछ का स्रोत अपभ्रंश साहित्य में भी मिल जाता है। इनके तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि जैन बौद्ध ब्राह्मण आदि धार्मिक भेदों से प्रभावित काव्यों के ऊपरी भेदों के नीचे लोक जीवन से उद्भूत एक ही चेतना अंत सलिला की तरह प्रवाहित थी और इनके प्रतीक लोकाश्रित मोटिफ हैं। उद्धरण एक, भारतीय साहित्य में मोटिफ के तुलनात्मक अध्ययन के लिए देखिए पेंजर की टिप्पणियों से युक्त कथा सरित सागर के टानी वाले अनुवाद को और ब्लूमफील्ड द्वारा किए हुए कार्यों को। विशेष सूचना के लिए देखिए डॉक्टर शून्य दास गुप्त और देका संस्कृत साहित्य का इतिहास फ्री 0828 29 की पाद टिप्पणी। मोटिफ के सामान्य अध्ययन के लिए देखिए टॉमसन कृत मोटिफ इंडेक्स ऑफ फोक लिटरेचर 1932-37 S030। हिंदी में डॉक्टर शून्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य का आदिकाल।